जय राधा माधव, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावन चारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे रामा 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 हरे हरे, श्री हरि नाम संकीर्तन की, श्रील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुधीरये, नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी, कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपाकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो पङ्कजनाभाय नमो पङ्कजमालिने नमो पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्ग्रे। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यम् ईश्वरम्। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तान् सञ्जीवयत किल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरणश्रवणात् त्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। कताञ्चना स्मृते यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् विस्मृते विपरीतं स्या श्रीचैतन्य नमामितम्। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का संडे फीस्ट क्लास के लिए स्वागत है। आज हम परम पूज्य श्रील आराधना स्वामी महाराज का फेस्टिवल ऑफ ग्रैटिट्यूड मना रहे हैं, महाराज की व्यास पूजा मना रहे हैं आज शाम को। तो उसी उपलक्ष्य में आज हम एक टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता के ऊपर डिस्कस करेंगे, जो आज का विषय है, आज के उत्सव का भी विषय है। हरे कृष्णा। तो आज हम फाइव प्रिंसिपल्स डिस्कस करेंगे, जो पांच उसूल हैं, जो कृतज्ञता जिस पर आधारित है, ग्रैटिट्यूड का जो फाउंडेशन या ग्रैटिट्यूड जो प्रैक्टिस करते हैं हम, उसमें पांच प्रिंसिपल्स होते हैं, तो उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। हरे कृष्णा। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत जीवन जो हम जी रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, और उसमें हम गुरु का स्मरण करते हैं, गुरु की इच्छाओं की पूर्ति करने का प्रयास करते हैं, पर गुरु को प्रसन्न करने के लिए हम बहुत सारी सेवाएं करते हैं, अलग अलग प्रकार के सेवाएं, अलग अलग भक्त जो हैं वो सेवा में एब्जॉर्ब रहते हैं, पर ये जो बाहरी रूप से हम सेवा कर रहे हैं उसका जो मूल आधार फाउंडेशन है वो ग्रैटिट्यूड। अगर हृदय में हम कृतज्ञता को डेवलप करेंगे, उसको विकास करेंगे उसका, तब हम बाहरी रूप से सेवा कर पाएंगे। नहीं तो एक्सटर्नली बाहरी रूप से हम भले कितना भी सेवा करें, पर अगर हमारा फाउंडेशन कमजोर है ग्रैटिट्यूड का, तो हम सेवा या तो करना छोड़ देंगे या अपराध युक्त सेवा करेंगे। तो इसलिए जरूरी है कि हम कृतज्ञता को अपने हृदय में डेवलप करें। जैसे कोई अच्छा बिल्डिंग है, बहुत सुंदर बिल्डिंग दिखता है तो हम इंप्रेस हो जाते हैं, अरे कितना अच्छा बिल्डिंग बनाया। पर जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर होता है वो बिल्डिंग के बाहरी दिखावे से प्रभावित नहीं होता, वो देखता है कि इसका फाउंडेशन क्या है, फाउंडेशन कितना स्ट्रांग है। उसी प्रकार शास्त्र में श्रीमद् भागवतम में बार बार इस बात पर महत्व दिया गया है कि गो टू द एसेंस, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। पराभवस्तावदबोध जातो यावन जिज्ञासत आत्मतत्वम यावत क्रियास्तावदिदं मनोवै कर्मात्मकम ये न शरीर बंधा। भगवान ऋषभदेव कहते हैं कि आवर लाइफ इज डिफीटेड, हम हार गए, पराभवस हम हार गए, अगर अबोध जातो, अगर हम जो तामसिक वृत्ति है उससे बाहर नहीं निकलेंगे तो। और वो क्या है वृत्ति तामसिक, यावन जिज्ञासत आत्मतत्वम, अगर हम आत्म साक्षात्कार की खोज में नहीं है तो हमारा मनुष्य जीवन वेस्ट। और क्या होगा, हम अपने मन गणित कार्य करते रहेंगे, यावत क्रियास्था वदिदम मनोवै कर्मात्मकम येन शरीर बंधा, और अलग अलग शरीर हम धारण करते रहेंगे, भौतिक जगत में भ्रमण करते रहेंगे, और इस तरह से हमारा लाइफ जो है एकदम वेस्ट हो जाएगा। देखते हैं हम, एक अच्छा इसका उदाहरण भी है, जैसे बॉलीवुड में बहुत बड़े एक्टर थे कुछ साल पहले, तो उनके सारे मैगजीन में फोटो आता था और उनका बहुत अच्छा बॉडी था, ऐसा फिजिक, ऐसा मसल्स, ऐसा दिखता था सबको, और उनको कहा जाता था कि वो कामदेव के अवतार है, ऐसा लोग बोलते थे उसे, बहुत हैंडसम थे वो। पर बाद में मालूम पड़ा वो एक्टर ने इंटरव्यू में बताया कि पूरी दुनिया मुझे मेरी सुंदरता की प्रशंसा करती है, मेरे फिजिक की प्रशंसा करती है, पर मुझे नॉन स्टॉप पीठ में दर्द रहता है, लोअर बैक। और वो क्यों, क्योंकि वो जिम्नेजियम जाते थे, एक्सरसाइज करते थे, वो केवल ऊपरी शरीर का जो ऊपरी भाग है उसके लिए एक्सरसाइज करते थे। उन्होंने कभी पैर, ये जो थाइज होता है, काफ मसल्स, हिप मसल्स, इसके लिए व्यायाम किया ही नहीं, क्योंकि उनको लगा अभी मैगजीन में कवर में जो है इतना ही फोटो आता है, तो इसको अच्छा किया ताकि वो कवर में फोटो में अच्छा दिखे, पर जो दिखता नहीं है उसके ऊपर काम नहीं किया। आप समझ रहे हैं, जो दिखता नहीं है उसके ऊपर काम नहीं किया, पर जो दिखता नहीं है उसी चीज ने उनको प्रॉब्लम दिया बाद में, क्योंकि पूरा शरीर का वेट जो है, पूरा लोअर पार्ट को लेना पड़ता है, पर आपने ऊपर इतना डेवलप किया, नीचे डेवलप नहीं किया, तो फिर वो ले नहीं पाया। तो उसी प्रकार हमारे साथ भी यही गलती होता है, हम देखते हैं कि हम लेक्चर अच्छा प्रिपेयर करते हैं, कीर्तन अच्छा गाते हैं, पैसा फंड रेजिंग अच्छा करते हैं, दिखता है, तो हम उसी चीजों पर एक्सपर्ट बनने का प्रयास करते हैं। पर भगवान के साथ जो हमारा संबंध है, चैंटिंग से या जर्नल राइटिंग से या भागवतम पढ़ना या प्रार्थनाएं अर्पण करना, ये जो कार्य है, जो पर्सनल है, जो साधना है, वो लोगों को दिखता नहीं है बाहरी रूप से। अगर आप अभी माला नहीं करेंगे तो आपके गुरु महाराज आके आपको बोलेंगे नहीं माला कर रहे हो कि नहीं, पूछेंगे नहीं आप। तो हमें लगता है कि जो दिखता है उसी पर फोकस करना है, पर उससे क्या होता है, जो फाउंडेशन है वो वीक हो जाता है और बाद में वो हमें प्रॉब्लम देता है। इसीलिए ये जो फाउंडेशन है भक्ति का वो है ग्रैटिट्यूड, और ग्रैटिट्यूड हमें नरिश करता है और जो हम भागवतम में सुनते हैं उसको पचाने की शक्ति देता है, वो डाइजेस्ट करता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस किया जाए, और अगर हम ये जो पांच मैं अभी उसूल बोलने वाला हूं, अगर हम इसको प्रैक्टिस करेंगे तो हम बहुत धनवान बन जाएंगे, अमीर बन जाएंगे। कैसे, अभी मार्केट में जाओगे बहुत सारे बुक्स मिलेंगे आपको, पैसे कमाने के आसान तरीके इंटरनेट में बहुत मिल जाएगा आपको, कैसे धनी बने, 30 दिन में टेक्निक सीखिए कैसे धनवान बन सकते हैं। पर अगर आपको मैं बताऊं कि ये जो सेमिनार या ये जो हम क्लास कर रहे हैं ग्रैटिट्यूड के ऊपर, इससे हमारे पास ऐसे स्किल सेट्स आएंगे, ऐसे कुछ चीजें आएंगी जिससे हम अमीर कैसे बनेंगे, अमीर जो है धनवान व्यक्ति का जो अनुभव है, धन होने का जो अनुभव है वो आपको आएगा। भले वास्तव में धन आए नहीं आए। अभी आप बताइए कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टू फील रिच और टू बी रिच? फील रिच। हाँ, आप लोग बड़े मुस्कुराते हुए बोल रहे हैं फील रिच। मुझे पता है अंदर आप क्या सोच रहे हैं। अंदर सोच रहे हैं क्या? बी रिच। अगर आप अच्छे डिवोटी हो तो आप बोलेंगे प्रभु जी दोनों होना चाहिए। फील रिच भी होना चाहिए, बी रिच भी होना चाहिए। पैसा भी होना चाहिए और अमीर अमीर होने का एक फीलिंग भी आना चाहिए। पर एक्चुअली आपको पता है वास्तव में क्या जरूरी है ज्यादा? मोर देन पैसा, इट इज द फीलिंग। जो आप भक्त देखते हो ना, वरिष्ठ भक्त जो डिवोटीज हैं, बहुत सालों से भक्ति कर रहे हैं, जो खुश हैं, आप देखोगे वो बहुत कंटेंटेड है, बहुत सेटिस्फाइड है, क्योंकि उनके अंदर कृतज्ञता भर भर के है। और अधिकांश लोग इस बात को समझ नहीं पाते। वो क्या करते हैं, किसके ऊपर फोकस करते हैं? जिंदगी मिली है किसी के काम आने के लिए, पर वक्त बीत रहा है कागज के टुकड़े कमाने के लिए। क्या करोगे इतने पैसे कमाकर, ना कफन में जेब है ना कब्र में अलमारी। और ये मौत के फरिश्ते तो रिश्वत भी नहीं लेते, है ना? तो ये हमारा लाइफ है। अभी आप सोचोगे अरे प्रभु जी को क्या जाता है, प्रभु जी को तो गरम गरम प्रसाद मिलता है, तो आप बोल सकते हो पैसे की जरूरत नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, पैसा बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम यह है कि जब पैसा बहुत हो जाता है तो इंसान जो है वो अपने आप को भूल जाता है। प्रॉब्लम यह है कि अगर पैसा नहीं रहेगा तो लोग उससे भूल जाते हैं। पैसा है तो लोग बोलेंगे हाउ आर यू, आप कैसे हैं। वो पैसा नहीं तो लोग बोलेंगे हु आर यू, आप कौन है। तो पैसा जरूरी है, आप गलत मत समझिए। पर अगर आपके पास चॉइस है, अगर आपको चॉइस दिया जाता है, केवल एक को चूज कीजिए, बहुत पैसा होगा पर संतुष्ट नहीं होगा, और दूसरा ऑप्शन है ज्यादा पैसा नहीं होगा बट आपको हमेशा लगेगा कि आप धनवान हैं, तो कौन सा आप प्रिफर करेंगे? सेकेंड ऑप्शन। क्योंकि इसका सबसे बड़ा एडवांटेज यह है कि अगर आप देखो, पैसा है और पैसा होने का फीलिंग है, दोनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फीलिंग। क्योंकि इसका एडवांटेज क्या है कि आपको टैक्स भरने की जरूरत नहीं। उसका टेंशन भी नहीं होगा आपको, राइट? तो ये जो ग्रैटिट्यूड का जो प्रिंसिपल्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये श्रीला प्रभुपाद जी ने हमें सिखाया हाउ टू बिकम वेल्दी। आप देखोगे श्रीला प्रभुपाद के बहुत सारे लेक्चर्स हैं, आपको इंटरनेट में भी मिलेगा, यूट्यूब में भी मिलेगा, जहां पर प्रभुपाद लेक्चर देते देते बीच में सडनली भार विभोर हो जाते हैं, अपने भक्तों को, अपने शिष्यों को थैंक यू बोलते हुए, अपने शिष्यों को ग्रैटिट्यूड व्यक्त करते हुए श्रीला प्रभुपाद जी ने कितनी बार वो रोने लगे। कितनी बार श्रीला प्रभुपाद ने कहा कि आप मेरे गुरु महाराज के प्रतिनिधित्व है, आपको मेरे गुरु महाराज ने भेजा है। तो ये ग्रैटिट्यूड प्रिंसिपल बहुत जरूरी है। श्रीला प्रभुपाद ने अपने अंतिम दिनों में श्याम सुंदर प्रभु को बुलाया और उनको एक अपने फिंगर से एक अंगूठी दिया, उनको रिंग दिया। पता है आपको किसको देने के लिए कहा? जॉर्ज हैरिसन को। अंतिम एक व्यक्ति जो है अपने अंतिम क्षण में केवल अपने शरीर के बारे में सोचता है, अपने पीड़ा अपने दुख के बारे में सोचता है, पर श्रीला प्रभुपाद के हृदय में इतनी कृतज्ञता थी, इतना वो ग्रेटफुल थे कि वो अंतिम समय में उन्होंने जॉर्ज हैरिसन को याद किया, क्योंकि जॉर्ज हैरिसन ने कृष्ण भावनामृत प्रचार में बहुत सहयोग किया था। और इसीलिए जो भी आप महान भक्तों को देखेंगे उनका सबसे बड़ा लक्षण यह है कि वो ग्रेटफुल है। मुझे याद है एक बार परम पूज्य शिला राधना स्वामी महाराज का हम लोग बर्थडे जन्मदिन मना रहे थे, श्रीनाथ जी प्रभु उनके घर के टेरेस पे, तो सबने अपना ऑफरिंग दिया। उसके बाद जब महाराज का चांस आया लेक्चर देने का, तो महाराज जो पुराने भक्त बैठे थे उनको देख देख के अलग अलग चीज याद करने लगे, बोलने लगे गौरांगा प्रभु आपको याद है आप वो हरा टी शर्ट पहन के आते थे कॉलेज से, और ऐसा सब चीजें बोलने लगे। फिर महाराज ने एक माता जी को देखा, बोला माता जी याद है आप मुझे इडली बना के लाती थी, ऐसा करके महाराज सबको अप्रिशिएट करने लगे। तो फिर वो एक कोई प्रभु जी कुछ करते थे सेवा, सबको छोटा छोटा सेवा जब याद करने लगे, तो एक हमारे महाप्रभु प्रभु हैं वो ज़्यादा एक्साइट हो गए। उनको लगा मैं भी याद दिलाता हूँ, मैंने भी महाराज के लिए कुछ किया। तो बोलने लगे महाराज महाराज मैं आपके लिए पराठा बनाता था, याद है पराठा बनाता था। महाराज बोला हाँ अभी भी उसको पचाने का ट्राई कर रहा हूँ। ऐसे थोड़ा मजाक करने लगे महाराज, पर सबको अप्रिशिएट किया महाराज ने, हर डिवोटी ने जो जो सेवा किया था, वो भी कभी का 89, मतलब 30 साल 35 साल पहले का सब महाराज याद कर रहे थे। तो पूरा हम लोग तो शॉक हो गए, महाराज को ये सब याद है, छोटा छोटा चीज याद, अभी कौन सा, अभी कौन क्या टी शर्ट पहन गया वो भी याद, थोड़ी याद रहता है हमको, महाराज को सब याद था। तो क्लास हो गया, फिर रात को हम लोग सब मंदिर आ गए, अगले दिन गौर गोपाल प्रभु और मैं महाराज के पास गए। तो मैंने कहा महाराज आपको ये सब याद कैसे, छोटी छोटी चीजें, कौन इडली बना के लाता था, कौन क्या करता था। तो महाराज बड़े गंभीर हो गए, पहले तो हंस रहे थे बात कर रहे थे, जब हमने ये पूछा कि आपको ये सब याद कैसे रहता है, तो महाराज ने बहुत इंटरेस्टिंग चीज कहा। महाराज ने कहा ये सारे भक्तों ने हमारे कम्युनिटी के लिए इतना सब किया है, और अगर मैं उनको याद नहीं करूंगा तो मेरे जीवन पे धिक्कार है, मेरा लाइफ कंडेम्ड है। तो इससे एक सब्सटेंस मालूम पड़ता है एक शुद्ध भक्त का। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम कृतज्ञता को डेवलप करें, और उसके लिए पांच प्रिंसिपल्स हैं। पहला प्रिंसिपल ये है कि ग्रैटिट्यूड जनरल नहीं होता, ग्रैटिट्यूड स्पेसिफिक होता है। मतलब जनरल मतलब प्रभु जी सब कुछ आपने दिया उसके लिए थैंक यू, ये जनरल हो गया। स्पेसिफिक मतलब थैंक यू फॉर वन, आज आपने अच्छा प्रसाद खिलाया उसके लिए थैंक यू। दूसरा प्रभु जी आप हमको आज यात्रा में लेके गए उसके लिए थैंक यू, ऐसा स्पेसिफिक। अभी कभी बहुत बार क्या होता है जब हम लोग थैंक यू बोलते हैं तो हम स्पेसिफिक नहीं बोलते, हम बोलते हैं प्रभु जी थैंक यू फॉर एवरीथिंग, सुना है प्रभु जी थैंक यू, प्रभु जी किसके लिए थैंक यू बोल रहे हैं, वन टू थ्री पॉइंट्स बोलिए। तो उससे क्या होगा, वो ग्रैटिट्यूड का एनर्जी को हम अनुभव कर पाएंगे, नहीं तो ग्रैटिट्यूड बहुत जनरल हो जाएगा। थैंक यू फॉर एवरीथिंग मीन्स थैंक यू फॉर नथिंग, थैंक यू फॉर स्पेसिफिक चीज। क्योंकि हमारे जो शास्त्र हैं उसमें आप देखोगे जो भी भक्त लोगों ने भगवान को कृतज्ञता व्यक्त किया है वो लोगों ने स्पेसिफिक चीजों के लिए थैंक यू बोला है, गजेंद्रा हो, कुंती देवी हो। जैसे प्रार्थनाओं में आप देखोगे अधिकांश प्रार्थनाओं में चार चीजें होती हैं, पहला तो भगवान की स्तुति होती है। कोई भी भक्त भगवान को प्रार्थना करते तो सीधा मांगते नहीं है, पहले वो भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं, फिर भगवान को थैंक यू बोलते हैं, भगवान से क्षमा याचना करते हैं, और बाद में रिक्वेस्ट करते हैं। और आप देखोगे अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश क्या, जब हम भगवान के सामने जाते हैं कितनी बार हम प्रेज करते हैं, भगवान की स्तुति कितनी बार करते हैं। सामान्य तौर पर हम भगवान के सामने जाते ही जेब से कागज निकालते हैं, हमारी मांगे पूरी करो भगवान, मुझे ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, बट फर्स्ट वी हैव टू थैंक। ये सबसे अच्छा उदाहरण इसका आता है कुंती देवी का। श्रीमती कुंती देवी फर्स्ट कैंटो में भगवान को, जब भगवान को ग्लोरीफाई करती हैं उसके बाद वो थैंक यू बोलती हैं, और स्पेसिफिक चीजों के लिए, यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कम से नरुद्धाति चिरम सुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथे न मुहुर्विपद्गणात्। तो कुंती देवी भगवान के अलग अलग जो उन्होंने कृपा किया उसको याद कर रही हैं, कैसे उन्होंने देवकी को कंस से बचाया और कैसे उनके बच्चों को भी अलग अलग विपत्तियों से बचाया। पर ऐसा नहीं कहा कि आपने मेरे बच्चों को बचा लिया थैंक यू, नहीं, वो स्पेसिफिकली बोलती हैं किन चीजों के लिए वो थैंक यू बोल रही हैं, वो याद कर रही हैं अलग अलग घटनाओं को। विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शनाद असत सभाया वनवास कृच्छ्रता मृदे मृदे नेक महारतास्त्र तो द्रौणस्त्र तस्चास्म हरे विरक्षिता। वो कह रही हैं कि जब भीम को एक पॉइजन्ड केक खिलाया गया विष से भरा हुआ, तब आपने भीम को बचाया, और पुरुषार्थ दर्शन जब बकासुर ने एक चक्र में जब उसका 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 सब उसके साथ जब उनका कन्फ्रंटेशन हुआ तब भीम को आपने रक्षा की भीम की। असत सभाया वनवास कृच्छ्रता, और जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ कुरु सभा में तो आपने उसकी रक्षा की, उसकी इलाज की रक्षा की। वनवास कृच्छ्रता, वनवास में आपने दुर्वास मुनि से हमारी रक्षा की। मृदे मृदे ने का महारतास्त्र, तो अलग अलग अस्त्रों पर जब प्रहार किया कौरव सेना ने तब आपने हमारी रक्षा की। और अब उसी समय कुंती देवी, कौन सा लेटेस्ट इंसिडेंट है जिसके लिए वो थैंक यू बोल रही है, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र अटैक किया था, द्रौणास्त्र तस्चास्म हरे भी रक्षिता। तो यह है स्पेसिफिक। तो हमें जब हम ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं भगवान को, हमें जनरल नहीं बोलना है, स्पेसिफिक, और वो कुछ भी सिंपल भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आपको बहुत बड़ा बड़ा चीज के लिए थैंक यू बोलना है, एनीथिंग सिंपल। जैसे आप 10वीं के परीक्षा में फेल होने वाले थे, बच गए, पास हो गए, यू कैन थैंक कृष्णा फॉर दैट, यू कैन थैंक कृष्णा फॉर गिविंग यू गुड पेरेंट्स, हमें अच्छे प्रामाणिक गुरु का आश्रय मिला, उसके लिए थैंक यू बोल सकते हैं। तो जब हम स्पेसिफिक चीज के लिए थैंक यू बोलते हैं तो हम ग्रैटिट्यूड की जो एनर्जी है, जो शक्ति है, उसको टैप करते हैं, नहीं तो ग्रैटिट्यूड एक थियरी हो जाता है, वो शहद के बॉटल को बाहर से चाटने के जैसा हो जाएगा। पर जब हम स्पेसिफिक चीजों के लिए थैंक यू बोलते हैं तो वो शहद का आस्वादन होता है। तो ये पहला प्रिंसिपल है ग्रैटिट्यूड का। व्हाट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल? नॉट जनरल बट स्पेसिफिक। दूसरा प्रिंसिपल है कि ग्रैटिट्यूड को हमें फ्रेश रखना है, फ्रेश ग्रैटिट्यूड। फ्रेश मतलब, देखिए कभी कभी जब हम थैंक यू बोलते हैं, जैसे मैं ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखता था तो मैंने लिखा, थैंक यू कृष्णा, आपने मुझे इतने अच्छे माता पिता दिए, मेरे नाना नानी के साथ मैं रहा, वो लोग कितने अच्छे थे, मेरे गुरु महाराज कितने अच्छे हैं। ऐसा करके हम जब थैंक यू बोलते हैं कृष्ण को, एक ऐसा एक समय आता है जब वो ग्रैटिट्यूड जो है ना एक औपचारिकता हो जाता है, क्योंकि हम अभी अपने माता पिता को मैं रोज थैंक यू, भगवान को थैंक यू नहीं बोल पाता हूँ उसी फीलिंग्स के साथ, उसी इमोशन, उसी भावनाओं के साथ, क्योंकि हर चीज जो है मैकेनिकल होने का डर रहता है। इसीलिए फ्रेश ग्रैटिट्यूड बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। अगर हम भगवान को थैंक यू बोल रहे हैं उन चीजों के लिए जो पिछले 24 घंटे में हमने अनुभव किया, अगर आप अपने आप को अभी अपने याद दिलाइए, पिछले 24 घंटे में आपके साथ क्या कुछ ऐसा हुआ है अच्छा जिसके लिए आप भगवान को दिल से धन्यवाद बोलना चाहेंगे, तो फिर क्या होगा, यहां पर आप आए उसके लिए आप बोल सकते हैं। बेसिकली इससे क्या होगा, आप हमेशा अलर्ट रहेंगे, हमेशा हम सतर्क रहेंगे ये देखने के लिए कि क्या है, क्या चीजें जिसके लिए मैं थैंक यू बोल सकता हूं। अगर आप पे एक आदत है साधना कार्ड या ऐसा कुछ भरने का जिसमें आप लिखते हो, तो ये आप दिन भर आप अलर्ट रहोगे ताकि रात को आप उसमें लिख सके। तो हम फिर फ्रेश फ्रेश ग्रैटिट्यूड, जैसे कि प्रसाद के समय भी फ्रेश खाना मिलता है, फ्रेश ताजा सब्जी जो है हमको आकर्षक लगता है, फ्रेश फ्रूट्स, उसी प्रकार ग्रैटिट्यूड को फ्रेश रखेंगे। जैसे मैंने एक बार कहा, आप एक सेमिनार कर रहा था मैं ग्रैटिट्यूड के ऊपर वर्कशॉप में, मैंने कहा आप पिछले एक साल में आपके पास जो जो हुआ है, जिन जिन लोगों ने आपको हेल्प किया उनको थैंक यू लिख सकते हैं। तो एक डेवटी ने मुझे आके प्यार से कहा, प्रभु जी मैंने इतने लोगों को हेल्प किया पिछले एक साल में, मुझे लोग थैंक यू बोलना चाहिए और आप बोल रहे मुझे सोचने के लिए, तो मुझे थोड़ा अंदर कड़वाहट है, तो वो कर नहीं पा रहा था, वो एक्सरसाइज इतना डिफिकल्ट पड़ रहा था उसको, क्योंकि हम हमेशा सोचते हैं कि हम कैसे दूसरे के ऊपर दूसरों को हेल्प कर रहे हैं, और हम ये सोचते हैं कि दूसरों को मेरी जरूरत है, मुझे किसी की जरूरत नहीं, ये अहम छोड़िए, सबको मेरी जरूरत है, ये वहम छोड़िए। हम इस अहम में और इस वहम में घूम रहे हैं कि सबको मेरी जरूरत है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं बहुत अच्छा हूं। तो बट ग्रैटिट्यूड जो स्पेशली जो फ्रेश ग्रैटिट्यूड है, वो स्पेशली जो लास्ट 24 घंटे में जो हुआ है उसके लिए जब हम थैंक यू बोलते हैं, और वो भले सामान्य चीजों के लिए, ऑर्डिनरी चीजों के लिए भी हो, उससे वो एनर्जी जो है ग्रैटिट्यूड का, और हम उसको कनेक्ट कर पाते हैं। जैसे मुझे याद है, मैं पहले हम लोग हमारे आश्रम में एक लॉकर रहता था, तो मैं अपना नोटबुक से मैं ग्रैटिट्यूड लिखता था, तो मैंने लिखा उसमें थैंक यू कृष्णा, तो मुझे उस दिन अच्छा प्रसाद मिला था, क्योंकि मेरे एक दोस्त थे जो प्रसाद बनाते थे, तो उनको मालूम था कि मुझे कुछ कुछ अच्छा नहीं लगता, जैसे वो छोले का सब्जी, अरबी और राजमा, तो हम साउथ इंडियन हैं तो पंजाबी लोगों को अच्छा लगता है ये, मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो मेरा एक दोस्त प्रभु जी जो है राधा वल्लभ प्रभु कुकिंग करते हैं, तो उन्होंने कहा मुझे, प्रभु मैं ये तीनों सब्जी बनाऊंगा आपके लिए, ब्रह्मचर्य के लिए कल बना रहा हूँ, और ऐसा बनाऊंगा कि आपको अच्छा लगेगा। तो उन्होंने ऐसा चैलेंज किया मुझे, और वो तीनों इतना टेस्टी था, उन्होंने क्या किया, वो छोले को इटालियन सॉस डाला और उसको इटालियन छोले का नाम दिया। तो वो मैंने खाया तो मुझे लगा, अरे ये तो कितना स्वादिष्ट है, लगा ही नहीं कि छोले का सब्जी है। फिर अरबी को उन्होंने क्या किया, अरबी को और चिपकता है वो, तो मुझे कभी अच्छा नहीं लगता था, और लोग बोलते थे अरे राधा रानी का फेवरेट है, तो मैं बोलता था नहीं, जो जिसने जिसका खेत है अरबी का उसने स्प्रेड किया है कि राधा रानी का फेवरेट है तो मैं कभी खाता ही नहीं था। तो वो डेवडी ने, राधा वाला प्रभु ने क्या किया, उसको डीप फ्राई करके क्रिस्पी जैसे वो होता है ना वेफर जैसा बनाया, तो उतना अच्छा स्वादिष्ट, मुझे लगा ही नहीं कि अरबी है। और तीसरा राजमा जो मैं कभी नहीं खाता हूं, उसको उसने मेक्सिकन टच देके राजमा टैकोस बनाया, तो मैंने कहा अरे वाह, तो मुझे इतना अच्छा लगा, तो मैं जो ग्रेटिट्यूड जर्नल है उसमें मैं ऐसे लिख रहा था, थैंक यू कृष्णा आज इतना अच्छा प्रसाद मिला, राजमा ऐसा लेके लिखा मैंने। और जैसे मैंने लिखा तो उस समय फोन की घंटी बजी उधर, तो मैं रख के फोन लेने गया, तो उस समय जो नया ब्रह्मचारी आश्रम में ज्वाइन किया था जो न्यू बक्ता ट्रेनिंग में, वो ऊपर क्लीनिंग कर रहा था, वो थोड़ा कुछ तो कर रहा था, उसने देख लिया और उसने पढ़ लिया वो पैराग्राफ, वापस आया और मुझे मालूम नहीं कि उसने पढ़ा, तो बाद में दो तीन दिन तक कुछ बोला नहीं। बाद में एक दिन मैं सुबह दोपहर को आश्रम में था, तो मेरे पास आया, उसने कहा प्रभु जी मुझे आप क्षमा करना, मैंने कुछ चीज़ आपकी डायरी में पढ़ लिया, आपने लिखा था थैंक यू कृष्णा फॉर राजमा छोले, आप ये सब चीज़ों के लिए भी थैंक यू बोलते हैं? कृष्ण को तो हमको शुद्ध भक्ति मिला है, हमें प्रामाणिक गुरु का आश्रय मिला है, इसके लिए थैंक यू बोलना चाहिए, तो आप इसके लिए भी थैंक यू बोलते हैं? तो मैंने कहा आप सही बोल रहे हो, हमें प्योर डिवोशनल सर्विस के लिए थैंक यू बोलना चाहिए। पर मैंने उसको कहा कि इट इज़ बेटर टू रिमेंबर कृष्णा फॉर ऑर्डिनरी थिंग्स देन टू फॉरगेट कृष्णा इन परसूट ऑफ द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग। कभी कभी हमको कुछ बड़ा बड़ा चीज़ बात करते हैं हम शुद्ध भक्ति का, पर भगवान को भूल जाते हैं उससे। कभी कभी छोटी छोटी चीज़ों के लिए अगर हम भगवान को थैंक यू बोल रहे हैं, पर अगर हम फीलिंग्स के साथ बोल रहे हैं तो कम से कम वो फ्रेश ग्रैटिट्यूड से हमारा नरिशमेंट होगा, तो ये बहुत ज़रूरी है। मैंने देखा है कुछ गृहस्थ हैं जो अपने फैमिली लाइफ में जिम्मेदारियों में इतने स्ट्रेस में रहते हैं और उनके आंखों से आंसू बहता है, वो भगवान के सामने जाके एक्चुअली रो पाते हैं, भगवान से रिक्वेस्ट कर पाते हैं, तो वो जो रिमेम्बरेंस ऑफ कृष्णा है दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। ऐसा क्योंकि शुद्ध भक्ति तो हमें मांगना ही चाहिए, बट एट द सेम टाइम इट इज इम्पॉर्टेंट दैट वी रिमेंबर कृष्णा। और इसीलिए ग्रैटिट्यूड भी जब हम प्रैक्टिस करते हैं फ्रेश रखने के लिए, देखिए एक होता है जो हमें रोज रोज मिल रहा है, कल भी मिला था, आज भी मिल रहा है और कल भी मिलेगा, जैसे मुझे मंदिर में एक रूम मिला है, तो मैं कभी कभी जनरल ग्रैटिट्यूड जब करता हूँ, मतलब जो डेली ब्लेसिंग्स है, जो डेली जो रोज मिल रहा है, रोज प्रसाद मिलता है, भक्तों का प्यार मिलता है, अच्छे माता पिता मिले, वो सब के लिए थैंक यू बोलते ही हम, वो डेली ब्लेसिंग्स हो गया। पर डेली ब्लेसिंग्स के साथ साथ हमें फ्रेश ग्रैटिट्यूड जो अभी 24 घंटे में हमें मिला है, जो पिछले दो तीन दिन में मिला है, उसके लिए भी हमें इमोशंस डाल के थैंक यू बोलना चाहिए। और उसमें भी एक और सब कैटेगरी है, एक होता है डेली ब्लेसिंग्स, दूसरा होता है फ्रेश ग्रैटिट्यूड, तीसरा होता है वाओ ग्रैटिट्यूड। एक होता है ना फीलिंग कि अरे वाह ये तो कुछ स्पेशल हो गया, जैसे आज सुबह महाराज बोल रहे थे क्लास में कि कभी कभी क्लास सुनते समय लगता है कि हाँ दिस इज अ ग्रेट पॉइंट, यस दिस इज राइट। तो ये जो फीलिंग है वाओ अमेजिंग, ये कृष्ण हमें दे रहे हैं, ये कृष्ण की कृष्ण का वॉइस है, कृष्ण की आवाज है, उसके लिए भी हमें थैंक यू बोलना चाहिए। तो ये दूसरा प्रिंसिपल है ग्रैटिट्यूड का, पहला है इट इज नॉट जनरल इट इज स्पेसिफिक, दूसरा फ्रेश, और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट, जब हम ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं उसमें हमें एक प्रश्न का उत्तर देना चाहिए, क्यों हम क्यों इस चीज के लिए थैंक यू बोल रहे हैं। एक होता है प्रभु जी आज मुझे अच्छा प्रसाद मिला थैंक यू, बट व्हाई, आपको क्यों ग्रेटफुलनेस हो रहा है, थोड़ा सोचिए, भले बड़ा आंसर नहीं हो, एक लाइन भी आपने बोला तो अगेन द ग्रैटिट्यूड में फिर एनर्जी आ जाता है। जैसे अभी फॉर एग्जांपल मुझे जब मैंने लिखा था कि मुझे अच्छा प्रसाद मिला थैंक यू, बट व्हाई, बिकॉज आई लाइक गुड फूड, मुझे अच्छा प्रसाद अच्छा लगता है। तो ये जब हम बात को स्वीकार करते हैं, एक्सेप्टेंस के स्तर पर आते हैं, तब हम इस क्वेश्चन को आंसर करते हैं व्हाई आई एम ग्रेटफुल फॉर समथिंग, then we actually experience the energy of gratitude. जैसे मेरा बीड बैग, एक बार मैं ट्रेन में बात कर रहा था किसी से, प्रीचिंग करते करते बीड बैग रख दिया और हमारा डिस्कशन इतना इंटेंस हो गया और मेरा स्टेशन आ गया, मैं उतरने लगा था मुझे याद आया, तो मैं पीछे भागा, बीड बैग उठाया और नीचे आ गया। तो मैंने उस दिन रात को लिखा ग्रैटिट्यूड जर्नल में, थैंक यू कृष्णा मेरा बीड बैग मुझे टाइम पे मिल गया। नाउ व्हाई बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाई, बिकॉज ये मेरा इनिशिएटेड बीड्स है और इस बीट्स के माध्यम से मैं अपने गुरु के साथ कनेक्टेड रह सकता हूं। तो ये जो एक लाइन मैंने एक्स्ट्रा लिखा व्हाई, क्यों मैं ग्रेटफुल हूं, तो उसमें हमारे इमोशंस और डीप हो जाते हैं। अगर हम व्हाई को आंसर नहीं करेंगे तो केवल एक वो मानसिक स्तर पर ही रहेगा हमारा ग्रैटिट्यूड। अगर हमको मन से उसको हृदय में लाना है तो क्यों प्रश्न का उत्तर देना जरूरी है। जैसे एक बार हम लोग कोई यात्रा में थे, वो पानी में स्नान कर रहे थे, तो उधर बहुत बड़े बड़े पत्थर थे, नीचे शार्प पत्थर थे, तो ऐसा कुछ तो खेल रहे थे, तो मैं ऐसा फिसल गया और नीचे गिरा जोर से, और जैसे मैं सर पे नीचे गिरा तो जहां पे पत्थर नहीं है उसी जगह पे गिरा। अगर पत्थर पे गिरा होता तो पूरा सर फट जाता था, और अगले दिन मेरा बहुत बड़ा ट्रैवलिंग का प्रोग्राम था, पूरा कैंसिल करना पड़ता। तो जब मैंने उसके लिए जब थैंक यू लिखा, देन हैव टू राइट व्हाई, क्यों? क्योंकि मेरी जान बच गई और मेरी जान प्यारी है मुझे। तो बेसिकली द पॉइंट इज, भले वो अच्छा आंसर नहीं हो या शुद्ध भक्ति का आंसर नहीं हो, बट व्हेन वी आंसर व्हाई, हमारे ग्रेटिट्यूड में एक मीनिंग आता है। जैसे मैं एक बार, मेरा पासपोर्ट का बैग था, मैं एक एयरपोर्ट में था मैड्रिड में, तो गुम हो गया और मैं घबरा गया। और एक बड़ा स्टोरी है, बाद में उनको मिल गया, और जैसे मुझे मिल गया मैं इतना ग्रेटफुल। क्यों? व्हाई आई एम ग्रेटफुल? आई हैव टू आस्क व्हाई आई एम ग्रेटफुल आई गॉट द बैग। क्योंकि सोचो, एक इंडियन आदमी कोई दूसरे कंट्री में है और उसके पास पासपोर्ट नहीं है, तो कौन है वो? कोई नहीं है। सो आई वॉज ग्रेटफुल। तो एक लाइन भी लिखते हैं हम, और एक लाइन भी बोलते हैं, क्यों वी आर ग्रेटफुल, देन देयर इज इमोशंस। तो यह है तीसरा प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है ग्रेटिट्यूड का? इट इज नॉट जनरल, स्पेसिफिक। दूसरा प्रिंसिपल, फ्रेश ग्रेटिट्यूड। तीसरा, वाई, आंसर वाई। और फोर्थ है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, हमें कृष्ण को देखना है हमारे ग्रेटिट्यूड में। कृष्ण हर समय हमें या तो मार्गदर्शन कर रहे हैं, या हमारे लिए अलग अलग योजनाएं कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं, या हमें कभी कभी कुछ चीजों की जरूरत है, वो हमें हम करना चाहते हैं, उसको हमें अलाउ करते हैं। कृष्णा इज अलाउविंग अस, एडवाइजिंग अस, और अरेंजिंग फॉर अस। जैसे भी प्रसाद का फॉर एग्जांपल, अभी मुझे डॉक्टर ने बोला ये नहीं खाने का, आलू नहीं खाने, आलू खाने से मुझे इधर शोल्डर में दर्द होता है। तो एक दिन फ्रेंच फ्राइज बना था, तो मैंने कहा खा लेते हैं, नहीं खाना चाहिए मालूम है, पर अभी खा लिया, इच्छा हो गई, बाद में हुआ नहीं कुछ पेन। थैंक यू कृष्णा, यू अलॉट मी। कुछ भक्त हैं, देखिए हमें अगर कृष्ण है और माया है, हमें क्या चूज करना चाहिए? कृष्णा, हमेशा कृष्ण को चूज करना चाहिए। और अगर किसी ने माया को चूज किया, बहुत बड़ा गलती किया, तो उसको क्या करना चाहिए बाद में? माया को नहीं चूज करना चाहिए, जानते हैं। अगर हमने माया को चूज किया तो उसको क्या करना चाहिए? यू शुड कम बैक टू कृष्णा। कृष्ण के पास वापस आना जरूरी है, और कृष्ण को थैंक यू बोलना जरूरी है कि आपने मुझे सबक सिखाया, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं, अगली बार नहीं जाऊंगा, अगली बार ये गलती नहीं करूंगा। बेसिकली वी हैव टू कम बैक टू कृष्णा। ग्रेटिट्यूड बेसिकली मीन्स कमिंग बैक टू कृष्णा। तो कभी कभी कृष्ण हमको अलाउ करते हैं, कभी कभी कृष्ण अरेंज करते हैं। जैसे मेरा पासपोर्ट का बैग गुम हो गया, जब मिल गया थैंक यू। एंड इसमें कृष्णा एलिमेंट क्या है? कृष्णा अरेंज्ड। कभी कभी ऐसा हुआ है आपके साथ, आप सडनली, आपको कुछ एक पॉइंट याद आया, या आप कुछ ऐसा बात कर रहे हो, आपको कभी लगा कि अंदर से आपने कुछ आवाज सुना, आपको मालूम पड़ा ये सही है गलत है, ये उसको बोलते हैं इंट्यूशन बोलते हैं, या वॉइस ऑफ कॉन्शियंस बोलते हैं। अंदर से कभी कभी बात कर रहे हैं, आपको लगता है ये सही है, ये गलत है, ये नहीं बोलना चाहिए या बोलना चाहिए, और वो आपका जो फीलिंग है वो सही निकलता है। तो वास्तव में जो आवाज है वो भगवान का आवाज है, कृष्णा इज स्पीकिंग। तो उसके लिए भी थैंक यू बोलना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए, अगर आप अपना भीड़ बैग इधर भूल गए, ठीक है, और आप अब जा रहे हो, और मैंने आपको बुलाया, प्रभु आपका भीड़ बैग, तो आप क्या कहोगे? अरे थैंक यू प्रभु, आपने मेरा भीड़ बैग दे दिया। तो उसी प्रकार अभी मैं ट्रेन में जा रहा हूं, मैं भीड़ बैग भूल गया, फिर सडनली मुझे याद आया। वो याद आया मतलब क्या है? कृष्ण, अब सोचिए, जैसे आपको कोई डिवोटी फ्रेंड आपके बगल में खड़ा है, आपको बोलता है प्रभु आपका भीड़ बैग भूल गया, तो आप उसको थैंक यू बोलोगे? तो कृष्ण हमारे साथ हैं, परमात्मा के रूप में हृदय में निवास करते हैं। तो आपको कुछ याद आ गया सडनली, तो मतलब कृष्ण ने आपको याद दिलाया। सो कृष्णा इज टेलिंग यू, कृष्णा इज अरेंजिंग फॉर यू, कृष्णा इज अलाउविंग यू। इसीलिए हमें हर समय भगवान को याद करना चाहिए। और ये आप देखोगे ना, सबसे अच्छा इसका उदाहरण आता है कृष्णा कनेक्शन इन आवर ग्रेटिट्यूड। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आता है महाप्रकाश लीला में। आपको पता है महाप्रकाश लीला किसके लिए फेमस है? क्या क्या उसमें, उसकी स्पेशलिटी क्या है महाप्रकाश लीला में? चैतन्य महाप्रभु का जो पास्ट टाइम है चैतन्य भागवत में, इसकी मेन विशेषता क्या है चैतन्य महाप्रकाश लीला का, कौन बताएगा? मर्सी इज वन, मर्सी। और क्या है उसमें, क्या क्या हाईलाइट्स है महाप्रकाश लीला में, क्या हुआ है महाप्रकाश लीला में, क्या प्रिंसिपल्स बाहर आते हैं? डिवोटीज आर एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड। और कुछ, कृष्णा इज पर्सनली इन्वॉल्व, डिवोटीज के लाइफ में भगवान इन्वॉल्व हैं। जैसे उदाहरण, जैसे आपको याद है गंगादास पंडित, गंगादास पंडित के साथ क्या हुआ था महाप्रकाश लीला में, कौन जानता है? तो भगवान जो है वो बहुत एंग्जाइटी में थे गंगादास पंडित, क्योंकि वो उस समय आक्रमण हुआ था मुसलमानों का गांव में और वो लोग भाग रहे, डर रहे थे। तो गंगा में आए अपने फैमिली को लेके, वो गंगा पार करना था, कोई उधर बोटमैन नहीं था। तो फिर भगवान आए किसके रूप में? बोटमैन के रूप। और ये और गंगादास पंडित और उसके परिवार को ले गए, और गंगादास पंडित ये इंसिडेंट हो गया, उसके बहुत सालों बाद चैतन्य महाप्रभु ने रिवील किया कि वो जो ना जो आया था बोटमैन वो मैं था। यू अंडरस्टैंड? सो कृष्णा केम। ये बहुत सुंदर चैतन्य भागवत में आता है, महाप्रभु बोल रहे हैं गंगादास पंडित को कि तबे आमी नौकनियाय के आरीर रूपे गंगा यावा इया याही तुम्हारा समीपे। मैं गंगा में आ गया तुम्हारे पास और मैंने तभी डिसाइड किया कि तुम्हारी रक्षा करनी है। गंगाया होई ते पार चिंती ले अमारे मने पड़े पार आमी कोरिला तुम्हारे। मैंने निश्चय किया कि मैं तुम्हें गंगा से पार कराऊंगा। तो उस समय गंगादास पंडित को पता नहीं था कि भगवान ही जो है वो एक बोटमैन के रूप में आए। जैसे और एक उदाहरण आता है उसमें, एक डिवोटी का जिसका नाम है दास, उसको फीवर रहता है, बहुत हाई फीवर, उसे लगता है कि वो मरने वाला है बीमारी में। उस समय अचानक एक डॉक्टर आ जाता है वहां पर और उसको ठीक कर देता है। और बाद में महाप्रकाश लीला में चैतन्य महाप्रभु उसको बताते हैं कि मैं डॉक्टर बन के आया था। वैद्य रूपे तोर ज्वर करिलाम नाश सुनिया भी वाला होया पदे से दास। ये सुनकर वो जो डिवोटी था वो प्रेम में भार विभोर हो गया, एक्स्टैटिक हो गया। इस तरह से महाप्रभु सबको रिवील करते हैं। शिवा ठाकुर को बोलते हैं, शिवा ठाकुर याद है जब तुम्हें भागवतम क्लास देवानंद पंडित के क्लास से उनको फेंक दिया था बाहर, तो शिवा ठाकुर घर पे आए और जब भागवतम पढ़ने लगे तो उनको अलग प्रकार का एक्सटेसी आने लगा और उनके आंखों से आंसू आने लगा। तो महाप्रभु ने कहा आई एंटर्ड यूर हार्ट, मैं तुम्हारे हृदय में जाकर मैंने तुमको वो दिव्य आनंद दिया। अद्वैत आचार्य ने वॉब लिया कि जब तक मुझे श्लोक समझ में नहीं आएगा मैं फास्टिंग करूंगा। और तब महाप्रभु अभी रिवील कर रहे हैं बहुत सालों बाद अद्वैत आचार्य को, तुम्हारे उपासे मुई मानो उपवास तुम्ही मोरे यही देहा से ही मोर अग्रास। जब तुम उपवास करते हो तो मैं भी उपवास कर लेता हूं और जो तुम उपवास के बाद प्रसाद लेते हो वही मैं खाता हूं, क्योंकि तुमने उपवास किया मैंने डिसाइड किया कि मैं तुम्हारा उपवास को तोड़ूंगा, क्योंकि मैं भक्तों का थोड़ा भी जो दुख है वो सहन नहीं कर सकता हूं। तिलार्दा तुम्हारा दुख आमी ना ही सही स्वप्ने आशी तुम्हारा सही तकता कही। इसलिए मैंने सपने में आकर तुमको उस श्लोक का अर्थ बताया। तो अभी महाप्रभु रिवील कर रहे हैं। और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हरिदास ठाकुर का। हरिदास ठाकुर के पीठ पर 22 मार्केट्स में उनको विप किया गया, तो महाप्रभु ने उसके बॉडी को अपने पीठ से कवर किया और महाप्रभु दिखा रहे हैं सबको। तो आप देखिए ये जो लाइफ में महाप्रकाश लीला के जैसे, अभी हम लोग वो स्तर पर तो है नहीं, पर ये महाप्रकाश लीला से हम ये सीख सकते हैं कि हमारे लाइफ में, आपके सबके लाइफ में कुछ ना कुछ तो अच्छा हुआ है ना, पिछले एक दिन में तो नहीं, कम से कम पिछले एक हफ्ते में कुछ तो अच्छा हुआ रहेगा जो आपके कंट्रोल में। सी ग्रैटिट्यूड का मतलब क्या है कि ऐसा कुछ चीज हमें मिला है जो मैं नहीं कर सकता, किसी और शक्ति से मुझे मिला है, उसी के लिए तो ग्रैटिट्यूड होता है। तो ऐसा सबके लाइफ में कम से कम एक हफ्ते में नहीं तो कम से कम एक महीने में, पिछले एक महीने में कुछ तो मिला होगा, पिछले एक साल में तो कुछ तो हुआ रहेगा। अगर आपको कुछ याद नहीं आ रहा है एक साल में भी, कम से कम आप जब से आपका जन्म हुआ है, जन्म से लेकर आज तक एक तो इंसिडेंट ऐसा होगा जिसके लिए वी आर रियली रियली ग्रेटफुल। तो वहां पे हम देख सकते हैं जैसे महाप्रकाश लीला में महाप्रभु ने डिवोटीज को रिवील किया, हम देख सकते हैं कि कैसे भगवान ने हमको हेल्प किया। अच्छा आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप में से कितने लोग कभी लाइफ में ऐसा हुआ है कि आप हाईवे में हैं, कार में हैं, और कार में रोड में कभी ऐसा हुआ है किसी के साथ कि आपको लगा कि आपका एक्सीडेंट बहुत बड़ा एक्सीडेंट होते होते बच गया? और सबने हाथ उठाया, देखिए मतलब किसने बचाया आपको? कृष्णा ने बचाया। कब मुझे याद है एक बार मैं बोरीवली में कहीं जा रहा था, ऑटो रिक्शा ने टर्न लिया, जैसे टर्न लिया तो आगे से बड़ा बीएसटी बस आया और एक सेकंड मतलब ऐसा बोलते हैं ना क्लोज शेव, और जैसे मैं बच गया हम लोग ऐसा, ड्राइवर भी और मैं भी दोनों ऐसा हो गए थैंक यू कृष्णा, थैंक यू हो गया। उसके बाद दो सेकंड बाद अपना फोन नॉर्मल जैसे व्हाट्सएप चालू हो गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मतलब हम अपने जीवन में हम लोग इतने डिस्कनेक्टेड हैं कि हम भगवान से इतने डिस्कनेक्ट हो गए। पर जो महाप्रकाश, जैसे महाप्रभु ने रिवील किया महाप्रकाश लीला में, जो उन्होंने भक्तों को हेल्प किया, हमें भी हेल्प कर रहे हैं अलग अलग ढंग से। सो वी हैव टू रिमेंबर दिस। आप अपने आप को पूछिए आपका जो बेस्ट एक्सपीरियंस है लाइफ का वो क्या है। आप देखोगे आपका जो बेस्ट एक्सपीरियंसेस है वो बाकी लोगों के साथ डीलिंग्स में है, या कुछ इवेंट्स है, या कृष्ण कथा में है, ऑनलाइन नहीं है। हमारे बेस्ट एक्सपीरियंस, आप किसी बच्चे को पूछिए आपका सबसे फेवरेट एक्सपीरियंस क्या है, कोई ये नहीं बोलेगा कि मैंने जो मूवी देखा था वो बेस्ट एक्सपीरियंस था। नहीं, बेस्ट एक्सपीरियंसेस आर ऑलवेज वेयर वी आर डीलिंग विद अदर पीपल। सो कृष्णा, सो वी कैन रिमेंबर दिस, हाउ कृष्णा कम्स इन आवर लाइफ। सो देयर आर फोर प्रिंसिपल्स हमने डिस्कस किया अभी तक, पांच है। पहला क्या है? ग्रैटिट्यूड इज नॉट जनरल बट स्पेसिफिक। दूसरा, gratitude has to be fresh. तीसरा, why? Fourth, Krishna is advising, is allowing or is arranging. मुझे याद है एक बार हमारे मंदिर में प्रेरणा का लेक्चर था, तो एक बॉम्बे के मेयर को बुलाया था स्पेशल गेस्ट। तो मेयर ने जब उनका ऐसे उनको स्पेशल गेस्ट तो बोलने के लिए थोड़ा माइक दिया, तो उन्होंने माइक में कहा कि सब बच्चों को, लड़कों को देखकर उन्होंने कहा सबसे बड़ा पाप क्या है। सब बच्चे थोड़ा कंफ्यूज थे अभी क्या आंसर देने का। तो मेयर ने कहा सबसे बड़ा पाप है जब हम अपने स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रखते, वो सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि हेल्थ अच्छा होना चाहिए, हेल्थ अच्छा होगा तो सब कुछ अच्छा होगा। तो उन्होंने थोड़ा हेल्थ के ऊपर एक पेप टॉक दिया, फिर उनका हो गया। फिर जब महाराज परम पूज्य श्री राधाना स्वामी महाराज को जब उनको बोलना था, तो उन्होंने बड़ी नम्रता से कहा कि मेरा जो विचार है, मेरा जो मत है थोड़ा सा अलग है। शास्त्रों के आधार पर रामायण को महाराज ने कोट किया, भगवान राम लक्ष्मण को बोलते हैं जब सुग्रीव के प्रसंग में आता है, जब सुग्रीव चतुर्मास के बाद भूल जाते हैं अपने कर्तव्य को, तो महाराज ने उसको कोट करते हुए पूरी सभा में ऐसा महाराज ने कहा कि सबसे बड़ा पाप है अनग्रेटफुलनेस, जब हम कृतज्ञता नहीं रखते वो सबसे बड़ा पाप। सो लाइक दैट महाराज वॉज सिंग। और एक शिला प्रभुपाद का भी बहुत सुंदर पास टाइम आता है, 1974 हैम्बर्ग जर्मनी में शिला प्रभुपाद का व्यास पूजा मना रहे थे उनके शिष्य। तो सबका ऑफरिंग्स होने के बाद जब शिला प्रभुपाद का लेक्चर था, तो शिला प्रभुपाद भार विभोर होकर ऐसे उनके आंखों से आंसू आने लगे, और प्रभुपाद ने कहा कि आप लोगों ने मेरे लिए इतना सब कुछ किया है और मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूं, मैं सिर्फ आप लोगों के लिए प्रे कर सकता हूं। ऐसा बोलकर प्रभुपाद रोने लगे, और फिर उठे व्यासासन से और शिवानंद दास उनके एक शिष्य सामने थे, तो प्रभुपाद ने उससे कहा कि शिवानंद प्रभु आप प्लीज मेरे लिए प्रे करो। तो शिवानंद प्रभु बोले प्रभुपाद आप हमारे गुरु महाराज हैं, आप शिला प्रभुपाद हैं, आप कृष्ण को प्रिय हैं, हम आपके लिए क्या प्रे कर सकते हैं। तो शिला प्रभुपाद ने कहा नहीं, आपकी प्रार्थनाओं में बहुत पावर है, क्योंकि आप वैष्णव हैं, यू आर अ वैष्णव, यू आर अ डिवोटी। तो देयरफॉर वी हैव टू रिमेंबर दैट एवरी डिवोटी इज डियर टू कृष्णा, एंड वी हैव टू बी ग्रेटफुल कि हमें इतना अच्छा भक्तों का संग मिला है। तो ये चार उसमें प्रिंसिपल्स हैं। और पांचवा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ग्रैटिट्यूड हमारे बारे में नहीं है, ग्रैटिट्यूड इज ऑल्सो अबाउट अदर्स। सामान्य तौर पर हम ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता एक्सप्रेस करते तो केवल अपने बारे में, थैंक यू कृष्णा मुझे ये मिला, थैंक यू कृष्णा मेरा लाइफ अच्छा है, थैंक यू कृष्णा मेरा मैं मी, इट्स ऑल अबाउट अवर सेल्स। पर ग्रैटिट्यूड जो है ना, प्रैक्टिकली ग्रैटिट्यूड का अर्थ है सेवा। देखो कुछ लोग है जो बोलते हैं थैंक यू, अभी आपको प्यास लगा है किसी ने पानी दिया, हम बोलते हैं थैंक यू। कुछ लोग बोलते हैं थैंक यू, कुछ लोग एक्चुअली फील करते हैं थैंक यू, और कुछ लोग हैं जो एक्चुअली थैंक यू जीते हैं, दे लिव अ थैंक यू। वन इज सेइंग थैंक यू, वन इज मीनिंग अ थैंक यू, एंड थर्ड इज लिविंग। लिविंग मतलब एक अपने आप को केंद्र में रखते हैं हम सामान्य तौर पर, अपने आप को साइड में रखना और बाकी वैष्णवों को सेंटर में रखना और उनकी सेवा करना। और ये तब होता है जब हम दूसरों के लिए प्रे करते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं और उनकी सेवा करते हैं। मुझे पता है कुछ डिवोटीज बोलते हैं प्रभु जी हम क्या दूसरों के लिए प्रे कर सकते हैं, हमारे प्रेयर का क्या मूल्य है। हमारे प्रेयर का शायद कुछ मूल्य ना हो, पर जब हम प्रे करते हैं ना, तो हमारे हृदय से जो ईर्ष्या का भाव है वो निकल जाता है। हम में से, आप में से अभी आप लोग सब कम से कम 50 लोगों को तो जानते होंगे ना लाइफ में, एटलीस्ट 50 पीपल। तो अगर आप, और उसमें से कितने लोगों को आप ऐसे भी जानते होंगे जिनको बीमारी है, जिनको बिजनेस में लॉस है, किसके संबंधों में प्रॉब्लम्स है, अगर हम उनका एक नाम लिखेंगे कागज में बस, और एक लाइन, कृष्णा प्लीज आप उनके कैंसर की बीमारी से उनको हेल्प करो, और किसी बच्चे को आप देख रहे हो वो बच्चे का नाम लिखो कृष्णा प्लीज लेट दैट चाइल्ड ऑलवेज बी हेल्दी हैप्पी, प्रेयर फॉर समवन एल्स, और उससे जो एनर्जी, उससे जो वो होता है, उससे जो क्या बोलते हैं, जो प्यार बढ़ता है वो बहुत ही दिव्य स्तर पर होता है। हालांकि हम शुद्ध भक्त नहीं है, और मैंने देखा है कभी कभी हम प्रे भी दूसरों के लिए करते हैं ना तो अपने आप को केंद्र में रख के ही करते हैं। अगर ऐसे कैसे सामान्य तौर पर ऐसा हो सकता है, इफ आई हैव टू प्रे फॉर यू नो प्रभु जी प्लीज उनको अच्छी बुद्धि देना, उनको अच्छा हैप्पीनेस देना, कृष्णा प्लीज वो प्रभु जी को मालूम पड़े कि मैं अच्छा हूं, लेट हिम सी गुड इन मी, तो आई एम प्रेइंग फॉर हिम, बट उसमें भी क्या होता है, समहाउ आई गेट माई सेल्फ, इट्स नॉट ईजी। दूसरों ग्रैटिट्यूड सेंटर्ड ऑन अदर्स ये आसान नहीं है, हम लोग हमेशा अपने बारे में जनरली सोचते हैं, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मुझे एक एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ मैं, हम लोग पांडव सेना करके एक ग्रुप है लंदन में, तो उनके साथ हम लोग एक यात्रा में जा रहे थे न्यू मायापुर, तो ट्रेन ले रहे थे, तो ट्रेन में तो जो उनके चेयरमैन है पांडव सेना के, राम प्रभु है, तो उन्होंने मुझे कहा प्रभु जी वो अब लड़की को देख रहे हैं, तो बॉयज़ और गर्ल्स का पूरा एक ग्रुप रहता है, सब साथ में आता है, तो उन्होंने कहा प्रभु जी ये लड़की जो है एकदम न्यू है, वो यात्रा में आ रही 10 दिन के लिए। मैंने कहा बाप रे, एकदम नए लोगों क्या समझ में आया, क्योंकि वो पूरे यात्रा में वो उन लोगों के लिए था जो इस्कॉन से कनेक्टेड है थोड़ा बहुत, और वो 10 दिन में उनको मॉर्निंग प्रोग्राम मिलेगा, थोड़ा कृष्णा कॉन्शियसनेस मिलेगा और उनको थोड़ा और स्ट्रांग हो जाएंगे, वो आइडिया था। तो एकदम नया व्यक्ति आएगा तो उसको कैसे समझेगा मॉर्निंग प्रोग्राम सब, तो मैंने कहा क्यों लाए उसको, उसने कहा प्रभु जी कल हम लोग शाम को पुस्तक वितरण कर रहे थे बस स्टॉप में, तो ये लड़की खड़ी थी बस स्टॉप में, तो हमने बुक्स दिया, तो उसने कहा आप लोग क्या है, कौन है, हमने कहा हम लोग इस्कॉन है पांडव सेना, तो उसने उधर ही गूगल किया पांडव सेना, और उसको मालूम पड़ा कि हम लोग रिट्रीट में जा रहे हैं, तो उसने कहा यू गाइज आर गोइंग फॉर सम रिट्रीट, तो हमने कहा हाँ, अच्छा कभी कल जा रहे हो, मैं भी आती हूँ, तो हमने कहा आ जाओ तो वहाँ का थोड़ा कल्चर अलग है तो आ गई अगले दिन, वो सामान लेके आ गई वो, तो मैंने कहा पर, और मुझे बोला गया था कि मुझे 10 दिन रामायण के ऊपर लेक्चर देना है, पूरा डिटेल में मैं रामायण पढ़ के गया था, अयोध्या कांड, उत्तराखंड, यू नो सब किष्किंधा कांड का पूरा कॉन्वर्जेशन, दशरथ और कई कई का कॉन्वर्जेशन। अभी मैं सोच रहा हूँ अभी इसके लिए कैसे उसको, अभी थोड़ा उसको नए लोगों के लिए डाइल्यूट करना पड़ता है ना, तो मैं क्या करूँ अभी सोच रहा था, कुछ दिमाग चला ही नहीं। पर मेरा ये जो ग्रैटिट्यूड जर्नल होता है उसमें मैं जैसे 2 मिनट लिखता हूँ, कुछ लोगों का नाम लिखता हूँ, उसके आगे एक लाइन लिखता हूँ, वन लाइन प्रेयर ऐसा, कृष्णा प्लीज ऐसा करके, तो मैं रोज रात को लिखता हूँ। तो मैंने क्या किया, जो 10 दिन थे हम लोग यात्रा में, रोज अलग अलग लोगों का नाम था, तो वो लड़की का भी नाम लिखता था, कृष्णा प्लीज वो भ्रमित ना हो इस यात्रा में ऐसा करके एवरीडे मैं एक एक लाइन लिख रहा था उसके लिए, उसके नाम पे, कि भगवान उसको बचा के रखना। और मैं सरप्राइज हो गया, चौथे या पांचवें दिन, क्योंकि वो पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करना पड़ता है, फिर वो पूरा क्लास में अटेंड करना पड़ता है, रामायण उसको कुछ पता ही नहीं है, एकदम नई लड़की है। और तो चौथे दिन, क्योंकि क्या है, देखो अंदर से अगर आप किसी के लिए प्रे करते हो ना, वो एनर्जी वातावरण में वो रहता है, वो जेन्युइन। तो फोर्थ डे वो खुद मेरे सामने आ गई, बोला हरे कृष्णा प्रभु, रामायण इज ग्रेट, राम इज वंडरफुल, सीता, वो राम और सीता के बारे में ऐसा ग्लोरीफाई कर रही थी, मुझे इतना अच्छा लगा। सोचिए कोई नया व्यक्ति है उसको रामायण अच्छा लगने लगा, और वो भी ब्रिटिशर और लास्ट तो साड़ी पहन के आ गई वो, हरे कृष्णा प्रभु। मैं बोला आपको ये सब अच्छा लगा यात्रा, बोला बहुत अच्छा लगा, आपको ये मॉर्निंग प्रोग्राम जम रहा था, बोला इट्स कूल, इट्स वेरी गुड, वो जो आप लोग वो प्लांट्स को स्कर्ट पहनाते हो ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे प्रेयर से हुआ, मैं ये बोल रहा हूँ कि एक पॉजिटिव एनर्जी देखे कितना स्प्रेड हो गया उससे। फिर अभी मैंने पिछले हफ्ते बात किया वो राम से, मैंने कहा कैसे हो प्रभु, बात कर रहे थे, मैंने कहा वो लड़की कैसी है, तो उसने कहा प्रभु वो हर हफ्ता हमारे प्रोग्राम में आ रही है, अभी 8 माला कर रही है। मैंने कहा अरे, तो ये द पॉइंट आई एम सेइंग इज, अगर हम सब लोग एक दूसरे के लिए प्रे कर रहे हैं, अभी हमें पता है हम भक्ति में टिके हैं क्योंकि कोई दूसरा कोई तो हमारे लिए प्रे कर रहा है नहीं तो हम नहीं रह सकते। तो हम भी अगर दूसरों के लिए थोड़ा बहुत सर्विस प्रेयर करेंगे, सो वी आर एक्चुअली ग्रैटिट्यूड का हम नेक्स्ट लेवल प्रैक्टिस कर रहे हैं, विच इज बेस्ड ऑन अदर्स। शिला प्रभुपाद का एक बहुत अच्छा इसमें पास टाइम आता है, 1977 में शिला प्रभुपाद का स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया था और शिला प्रभुपाद बॉम्बे में थे और मेड्रास के गवर्नर आ गए और उन्होंने शिला प्रभुपाद से कहा कि शिला प्रभुपाद आप, मैं गवर्नर बंगलो हमारा मेड्रास में, चेन्नई में बहुत बड़ा बंगलो है, आप उधर आके रहिए, आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाएगा, आप ठीक हो जाए। उन्होंने 10 मिनट का पूरा प्रेजेंटेशन दिया कि कैसे वो बंगलो में आपका हेल्थ सुधर जाएगा। प्रभुपाद ने बड़े सम्मानपूर्वक उसको सुना। पूरा सुनने के बाद शिला प्रभुपाद ने उससे कहा, अच्छा आप गवर्नर जी, आप तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के काफी क्लोज है ना। उसने कहा हाँ, मैं उसको अच्छे से जानता हूँ। तो शिला प्रभुपाद ने कहा, अच्छा ऐसा उनको बोलेंगे, इंदिरा गांधी को जरा कन्विंस करेंगे कि मेरे जो शिष्य हैं अमेरिका के बहुत अच्छे लोग हैं, ये CIA एजेंट नहीं है और उनको ऐसा हैरेस नहीं करना चाहिए। तो सबके सब डिवोटीज और शॉक हो गए क्योंकि प्रभुपाद के स्वास्थ्य के बारे में वो लोग बात कर रहे हैं पर प्रभुपाद किसके बारे में सोच रहे हैं, भक्तों के बारे में सोच रहे हैं। तो गवर्नर ने कहा ठीक है प्रभुपाद जी, मैं प्रधानमंत्री से बात करूंगा। अच्छा पर मुझे आपको एक आश्वासन दिलाना है कि आपके हेल्थ के लिए जो साउथ एशिया के जो बेस्ट डॉक्टर हैं वो मेड्रास में, अगर आप हमारे गवर्नर बंगलो में रहेंगे तो एशिया के सबसे बेस्ट डॉक्टर आके आपका इलाज करेंगे। तो फिर प्रभुपाद ने तुरंत कहा, अच्छा आप इंदिरा गांधी को जरा कन्विंस करेंगे क्या, मेरे लोग जो हैं उनका परमानेंट रेजिडेंसी स्टेटस उनको देंगे क्या इंडिया का। वापस प्रभुपाद अपने भक्तों के बारे में बोल रहे हैं, वो बार बार प्रभुपाद के स्वास्थ्य के बारे में पूछ रहे हैं प्रभुपाद, और प्रभुपाद फिर बोल रहे हैं कि मायापुर में उस समय कुछ डाकुओं ने अटैक किया था। तो शिला प्रभुपाद जी को बहुत चिंता थी भवानंद प्रभु के बारे में, बाकी भक्तों के बारे में। वो जैसे वो प्रभुपाद को मिलने आए, प्रभुपाद उनको गले लगाए और भिलक भिलक कर रोने लगे थैंक यू बोलते हुए। तो पॉइंट यह है कि ग्रैटिट्यूड हमारे बारे में नहीं है, ग्रैटिट्यूड इज अबाउट अदर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट समझना। सो 5 प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रैटिट्यूड हमने आज डिस्कस किया। पहला, इट इज नॉट जनरल, इट इज स्पेसिफिक। दूसरा, फ्रेश। तीसरा, वाई। फोर्थ, कृष्णा इज एडवाइजिंग, कृष्णा इज अलाउिंग, कृष्णा इज अरेंजिंग। और पांचवा, ग्रैटिट्यूड इज प्रेइंग एंड सर्विंग अदर्स। और ऐसा करने से मेन बेनिफिट्स इसका क्या मिलता है कि ग्रैटिट्यूड से जो है ना भक्ति का जो, देखो भक्ति में सत्वगुण लगता है, आप सब मानते हैं सत्वगुण में प्रैक्टिस करना पड़ता है, पर हमें बहुत सारे भक्तों को सत्वगुण आकर्षक नहीं लगता क्योंकि सत्वगुण में देर इज नो, मैं परम पूज भक्ति विज्ञान गोस्वामी महाराज का एक लेक्चर सुन रहा था तो वो बोल रहे थे कि कैसे सत्वगुण में ना एक इमोशन नहीं होता। जनरली सत्वगुण में देर इज नो प्रोनाउंस्ड इमोशन, सत्वगुण में एक पीस रहता है और रजोगुण में और तमोगुण में एक पैशन रहता है या एक इमोशन ज्यादा रहता है। तो इसीलिए हम फिसल जाते हैं और सामान्य तौर पर पैशन और तमोगुण और रजोगुण में रहते हैं और सत्वगुण में रह नहीं पाते। तो महाराज ने बहुत अच्छा पॉइंट बताया, महाराज ने कहा सत्वगुण में अगर रहना है तभी भक्ति पॉसिबल है, और सत्वगुण में रहना है तो एक इमोशन है जो हमें सत्वगुण में रख सकता है और वो है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड एक ऐसा इमोशन है जो हमें हमेशा पॉजिटिव रखेगा और सत्वगुण में रखेगा। क्योंकि हम लोग एक्चुअली आप देखोगे ना, हम लोग इमोशनल लोग हैं, हम बोलते हैं मनुष्य जो है वो लॉजिकल योनि है, मनुष्य योनि में हम सोच सकते हैं, लॉजिकल थिंकिंग कर सकते हैं, पर एक्चुअली आप देखोगे ना ह्यूमन बीइंग्स आर इमोशनल बीइंग्स। हम बोलते हैं लॉजिकल हैं पर हम इमोशनल हैं। जो लॉजिकल हमारा पार्ट है ना वो एक छोटा सा ऊपर का हिस्सा है बस, नीचे पूरा इमोशंस भरा हुआ है। और वो लॉजिक भी हम लोग क्या करते हैं, वो लॉजिक हमारे इमोशंस को एक्सप्लेन करने के लिए यूज करते हैं। तो देयरफॉर अगर इमोशनल बीइंग्स हैं तो अगर हम ग्रैटिट्यूड को लाएंगे अपने लाइफ में तो वो इमोशंस का प्यूरिफिकेशन हो जाएगा। और कृतज्ञता का जो प्रैक्टिस है क्या उससे हमें कृष्ण प्रेम मिलेगा, क्या लगता है आपको? अगर ग्रैटिट्यूड हम प्रैक्टिस करेंगे रोज तो क्या हमें कृष्ण प्रेम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज है, भले हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो या नहीं हो, अगर हम ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 100% गारंटी आपके साथ होगा आपको कम से कम इस बात का हमें साक्षात्कार हो जाएगा कि भले हम भगवान से प्यार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हमारा प्यार बढ़ रहा है कि नहीं, पर हमें इस बात का विश्वास हो जाएगा कि भगवान हमसे प्यार करते हैं। ये तो 100% गारंटी, क्योंकि हम कॉन्स्टेंटली रिमेंबर कर रहे हैं कि भगवान ने हमारे लिए क्या किया, यू हैव डन दिस मच, यू हैव डन दिस मच। तो जब हम सोचते हैं, इस दुनिया में भी हम सोचते हैं कि कोई हमारे लिए बहुत कुछ कर रहा है, तो हमें विश्वास हो जाता है कि वो व्यक्ति हमसे प्यार करता है कि नहीं। जैसे मेरे बहन का जो बेटा है, उसको बचपन से मैं जान रहा हूँ, तो अभी बड़ा हो गया, उसको भी शादी हो गया, और वो बचपन में बहुत मस्ती करता था, तो उसको हम लोग बहुत छिड़ाते थे, उसको नालायक बोलता था, मैं अभी भी उसको नालायक ही बोलता हूँ। तो अभी उसका शादी हो गया, और उसका एक बहुत अच्छी लड़की के साथ शादी हुआ, तो दोनों मंदिर आए मिलने के लिए, भगवान का ब्लेसिंग्स लिया, और वो लड़की बहुत अच्छी परिवार की है, बहुत कल्चर्ड फैमिली, वेरी गुड गर्ल। तो हम लोग बैठे थे ऐसे प्रसाद ले रहे थे, तो मैंने कहा, मैंने उस लड़की को देखकर कहा कि तुमने इससे शादी कैसे किया, तुम इतनी अच्छी लड़की हो। तो पहले तो हंसे वो लोग, तो फिर वो लड़की ने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताया। उसने कहा कि हम लोग 5 साल कॉलेज में थे, मेडिकल कॉलेज में, तो नॉर्मल जैसे फ्रेंड्स होते हैं सब लोग वैसे ही थे, पर और ये जो लड़का है ना मेरा भांजा, वो ज़्यादा बोलता नहीं है, एक्शन वाला व्यक्ति है, बोलता कम है, पर वो बोल रही थी कि 5 साल में मैंने ऑब्जर्व किया कि नॉर्मल हमारा कॉलेज का लाइफ चल रहा है, फ्रेंड्स हैं, पर कंसिस्टेंट एक्शंस, सेवा प्यार दिखाने का जो एक्शन है, उससे 5 साल बाद मुझे पूरा कन्विंस हो गया कि ये मुझसे प्यार करता है। और जब मुझे ये कन्विंस हो गया कि ये प्यार करता है, तो मुझे पता नहीं कैसे आई ऑल्सो स्टार्टेड फॉलिंग इन लव विद। आप समझ रहे हैं पॉइंट को, कि वेन यू आर, मैंने उसको कहा तभी, ये तो हमारा कृष्ण के साथ यही संबंध है। अगर हम ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करेंगे कॉन्स्टेंटली, तो हमें इस बात का विश्वास हो जाएगा कि कृष्णा लव्स मी, एंड इफ आई एम कन्विंस कृष्णा लव्स मी, हम न चाहते हुए भी हम प्यार करने लग जाएंगे, क्योंकि कोई हमारे लिए इतना कर रहा है, नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, ऐसा गाना है, करना था इनकार मगर इकरार तुम्ही से कर बैठे। Yes, I have to stop the class, I think. Hare Krishna. So therefore, it's very important that gratitude ka benefit, sabse bada benefit ye hai ki before we get love of Krishna, we will realize Krishna loves us. Aur ek interesting cheez hai, jab hum constantly thank you bolte hain Bhagwan ko dil se, to kya hoga pata hai? अच्छा, आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर मैंने आपके ऊपर उपकार किया, अगर कुछ समझ लीजिए आपको 15-20 चीज का मैंने कुछ हेल्प किया आपको, तो आप क्या बोलोगे? प्रभु जी थैंक यू फॉर, प्रभु जी आपने, आपके जैसे मुझे नौकरी मिला, थैंक यू प्रभु, आपके जैसे मुझे ये हुआ, प्रभु जी थैंक यू मुझे घर मिला, तो यू विल से थैंक यू फॉर 1, 2, 3, 4। और 15 चीज के लिए जब आप थैंक यू बोलोगे, थैंक यू प्रभु जी आपने सब किया मेरे लिए, थैंक यू, उसके बाद स्वाभाविक रूप से आपके मुंह से क्या निकलेगा? What I can do for, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, ऐसा आप naturally बोल दोगे। अगर किसी ने आपके ऊपर उपकार किया है, उसको thank you बोलते बोलते आपको, आपके फिर मुझे निकल जाएगा, मैं भी आपके लिए कुछ करना चाहता हूं, please, how can I please you, right? तो सोचिए, अगर हम कृष्ण को genuinely thank you बोल रहे हैं, गुरु को genuinely thank you बोल रहे हैं, तो एक ऐसा समय आएगा कि हम वास्तव में इमोशंस के साथ भगवान को बोल पाएंगे, कृष्णा आई वॉन्ट टू प्लीज यू। आप सामान्य तौर पर जब हम प्रार्थना करते हैं, तो हम ये विचारधारा, हम ये कॉन्शियसनेस में देखें कि कैसे भगवान हमको खुश कर सकते हैं। वी प्रे सो दैट गॉड गिव्स मी व्हाट आई वांट, बट ग्रैटिट्यूड विल टेक अस टू द लेवल वेयर वी कैन टेल कृष्णा व्हाट यू वांट। और आप देखोगे हमारे 6 गोस्वामियों का प्रेयर्स, माधवेंद्रपुरी का प्रेयर्स, ये सब लोग गोस्वामीज हैं हमारे, उनकी प्रार्थनाएं क्या है, वो भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं। अभी हम वो स्तर पर तो है नहीं, पर उसका एक झलक, उसका एक ग्लिम्स हमें मिलता है जब हम ग्रैटिट्यूड का लाइफ जीते हैं। इसलिए आज के दिन विशेष रूप से हमें इस बात पर मेडिटेट करना चाहिए कि हाउ कृष्णा, जैसे आज सुबह महाराज ने कहा, कृष्णा साक्षात हरित्व ना इज गुरु, और गुरु के प्रति जब हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, गुरु जानते हैं कि हमें कैसे कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस करना है। एक बल्ब को हम डायरेक्टली पावर हाउस के साथ कनेक्ट करेंगे तो बल्ब ले नहीं पाएगा, एक ट्रांसफार्मर रहता है जो वो हमारे लेवल पे हमको इलेक्ट्रिसिटी वो सप्लाई करता है। उसी प्रकार कृष्ण के साथ डायरेक्टली हम कनेक्ट नहीं कर सकते, बट वी कैन कनेक्ट टू कृष्णा थ्रू गुरु। और विशेष रूप से हमें भक्ति में संघर्ष इसीलिए हो रहा है, वी आर नॉट एबल टू प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड सिंसियरली, बिकॉज हमारे और भगवान के बीच में एक बहुत बड़ा चीज है, माइंड इंटेलिजेंस ईगो का जो मिश्रण है, बड़ा बबल, एक बड़ा बादल छाया हुआ है अंधकार का। पर ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस एक ऐसा प्रैक्टिस है जिससे वो बबल को हम बस्ट कर सकते हैं और हमारे और भगवान के बीच में जो एक दीवार है उसको हम भेद कर सकते हैं। और आजकल विशेष रूप से कलयुग का इतना प्रभाव और इतना हम लोग डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, तो ऐसे समय में इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी कनेक्ट विद द लॉर्ड। और मैं अंत में थोड़ा एक आई वुड जस्ट लाइक टू कंक्लूड विद अ फ्यू पॉइंट्स और वील टेक क्वेश्चंस। आई डोंट नो क्वेश्चंस लेना, वील टेक सम क्वेश्चंस देन बोथ। सो आई विल स्टॉप हियर, वील टेक फ्यू मिनट्स ऑफ क्वेश्चंस एंड देन वी कैन एंड द क्लास। हरे कृष्ण। वेट वेट वेट, हु इज द इंचार्ज हियर? नो वन इज इन। ठीक है, सो आई विल कंक्लूड द क्लास। सो वी बेसिकली डिस्कस्ड बिफोर वी टेक क्वेश्चंस फाइव प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रैटिट्यूड। फर्स्ट, ग्रैटिट्यूड इज नॉट जनरल, इट इज स्पेसिफिक। सेकंड, ग्रैटिट्यूड इज फ्रेश। थर्ड, वी आंसर द क्वेश्चन व्हाई ग्रैटिट्यूड में। फोर्थ प्रिंसिपल है टू रिकॉग्नाइज कृष्णा इज एडवाइजिंग अस, कृष्णा इज अलाउिंग अस, कृष्णा इज अरेंजिंग फॉर अस। एंड फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इज ग्रैटिट्यूड इज सेंटर्ड ऑन अदर्स। और उसका सबसे बड़ा बेनिफिट है ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस का, वी विल रियलाइज दैट कृष्णा लव्स अस। And second, we will also want to please Krishna. So I'll stop here and we can have some questions now. Hare Krishna. Yes, Prabhuji ka question, baad mein Mataji ka question. Yes.
Hare Krishna Prabhu, thank you very much. I think we stop at the benefit of practicing gratitude, and we wrote with the first point, it keeps us positive and in mode of goodness. And then I think we stop somewhere.
No, I mentioned just now. Pehla to ki we can... Yeah, we explained both the points. One is how we will realize Krishna loves us, and secondly, we will want to serve Krishna and please Krishna. Yes, Hare Krishna. Yeah, after Mataji ka question ke baad aap.
Hare Krishna Prabhuji, thank you so much for this wonderful insight. Prabhuji, my question is that you mentioned that whenever we have some intuition, that means Krishna is talking to us.
Not always. Mind bhi bol sakta hai.
No, what I wanted to ask is, what happens when sometimes we forget very important things? In that case, how to see it? Like
Vismritir, what is it? Jnanam apohanam cha.
Yes.
So Krishna is a cause of forgetfulness also.
So, like, it, even if it is very important.
So what is the question?
That how do we see when we forget things which are very important related to Krishna?
So some after that, when you remember that you forgot, then you can thank Krishna.
Okay. But we can't do anything about it. It's been done.
Abhi done, na? Abhi ho gaya, abhi kya kar sakte hain?
Except for feeling guilty.
No. See, maine aaj class mein bola tha. But Krishna consciousness means coming back to Krishna. That is more important than... Kabhi-kabhi hum विस्मृति में भी रहते हैं, पर जब याद आता है कि हम भगवान को भूल गए तब हम क्या करते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, चैंटिंग, अटेंटिव चैंटिंग सबने सुना है, क्या करना है चैंटिंग के समय? हरि नाम को सुनना है, हरे कृष्ण। अभी आप बताइए ऑनेस्टली, कोई ऐसा है जो 16 माला में हर महामंत्र 1728 महामंत्र जो हम चैंट करते हैं, हर एक महामंत्र को आप ध्यान से सुनते हो? तो मतलब हमारा चैंटिंग में ऑफेंस है? पूरा चैंटिंग ऑफेंसिव है? इट इज नॉट ऑफेंस। अगर आपका माइंड वॉन्डर हो रहा है, इट इज नॉट एन ऑफेंस। पर बहुत बार चैंटिंग के समय हमें याद आता है कि हमारा माइंड वॉन्डर हो रहा है, तब हम क्या करते हैं? तब हम बहुत बहुत बार सोचते हैं, अरे इतना घूम, माइंड जा रहा तो जाने दो, हरे कृष्ण। वो ऑफेंस है। अगर उस समय जब हमें याद आता है कि हमारा मन भटक रहा है, उस समय अगर हम वापस हरिनाम में आते हैं तो फिर वो अपराध नहीं है, उसको नामाबाज चैंटिंग कहते हैं। तो अब भूल गए तो भूल गए, अभी क्या कर सकते हैं? याद नहीं रहता ग्रैटिट्यूड का, हमें याद ही नहीं रहता, हम हमेशा मांगते रहते हैं भगवान से। तो जब याद आता है कि हम भूल गए, तब हमें याद करना चाहिए। इबादत तो वो है, इबादत मीन्स प्रेयर, इबादत तो वो है जिसमें जरूरतों का जिक्र ना हो, हो तो बस उसकी रहमतों का शुक्र हो। We have to remember what Krishna has given. And if we don't remember, then in satsang we remember and then we thank Krishna. Okay? Hare Krishna. Yes. Yes, Prabhu.
हरे कृष्णा.
हु इज दैट? या
हरे कृष्ण. प्रभु जी, आपने बताया कि कृतज्ञता व्यक्त करना चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति ने हमारे साथ बहुत अच्छा किया है, लेकिन बाद में बहुत बुरा भी किया है, और
वही व्यक्ति ने
तो ऐसी स्थिति में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और बुरा का जो मात्रा है वो थोड़ा ज्यादा है अच्छे से, तो ऐसी स्थिति में क्या?
अगर हम जो हमारे साथ अच्छा हो रहा है उसके लिए थैंक यू बोलते रहेंगे तो भगवान हमें इतनी बुद्धि देंगे हाउ टू डील विद पेनफुल इवेंट्स. कुछ चीजें भगवान हमें शक्ति देते हैं, कुछ चीजें हमारे हाथ में हैं. तो जो आपके हाथ में है, जो आपके साथ अच्छा हुआ है, उसके लिए अगर आप ग्रेटफुल हैं तो जो पेनफुल चीजें हैं उनको हैंडल करने की शक्ति भगवान देंगे. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? तो जो आपके पास अच्छा हुआ है कम से कम उसके लिए तो थैंक यू बोलिए. कभी कभी लोग बोलते हैं जो हमारे पास अन्याय हुआ है उसको कैसे ग्रेटफुल रहे? नहीं रह सकते. इट्स ओके. मैं तो ये बोलता हूं जब कुछ अन्याय हुआ है तो आपको मीडिएशन करना चाहिए. कभी कभी लोग ना बोलते हैं मैं क्षमा करता हूं, और लोगों के साथ बहुत बड़ा शोषण हुआ है, हिंसा हुआ है, अगर ऐसा कुछ हुआ है, और बोलते हैं मैं माफ करता हूं, अगर वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनके अंदर वो क्षमता ही नहीं है, शक्ति ही नहीं है, और वो अंदर से उनको घुटन हो रहा है और बाहर से ऐसा माफ कर रहे हैं, तो वो अपने आप के ऊपर हिंसा कर रहे हैं वो. सो एक्चुअली वी शुड टेक हेल्प. किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाना चाहिए जो हमें मार्गदर्शन करे उस समय और हमें बताए कि आप कैसे इसके ऊपर डील कर सकते हैं, केस टू केस बेसिस पे. पर अगर सीरियस इश्यू नहीं है, छोटा मोटा जो इश्यू है, तो उसको तो हम ट्रांसेंड करना सीखना चाहिए भक्तों के संग में. है ना? अगर झुक जाने से रास्ता रिश्ता सुधर जाए तो झुक जाओ, पर हर बार आपको ही झुकना पड़े तो रुक जाओ. सो कभी कभी झुकना पड़ता है, बट हमेशा आपको ही करना पड़ रहा है और आपको अंदर से तकलीफ हो रहा है तो देन यू टेक हेल्प.
प्रभु जी, ये जो आउटस्पोकननेस कैसे लेके आए? मतलब कई बार हम लोग इनहिबिशन होता है हमारे अंदर, हमें पता कि पेरेंट्स ने, हमारी फैमिली ने, फ्रेंड्स ने बहुत बड़े काम किए, लेकिन हम ब्रॉटअप इस तरीके का जहाँ पर ग्रेटिट्यूड नॉर्मली हम पे नहीं करते हैं, तो वो एक नेचर कैसे बिल्ड करें जहाँ पर हम ग्रेटिट्यूड लोगों को एक्सप्रेस करें, वो कैसे धीरे धीरे लेके आए?
तो मैंने वही तो एक्सरसाइज किया ना आज. अगर आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते तो कम से कम राइट लिख तो सकते हैं. लिखना, आप समझ रहे हैं, लिख तो सकते हैं. बोल नहीं पाते हम लोगों को बिकॉज ऑफ कल्चर ही नहीं है हमारा. जैसे मैं अभी, हम लोग वो जनरेशन में बड़े हुए हैं कि हमने कभी थैंक यू बोलना सीखा ही नहीं. पर जब मेरे पिताजी गुजर गए, मुझे याद है मैं बद्रीनाथ में था, तो मेरे पिता, हम लोग वो जनरेशन से हैं जहाँ पर ऐसे भावनाओं का व्यक्त नहीं करते थे. पर मेरे पिताजी के गुजर जाने के बाद अभी 12 साल हो गया, कितनी बार रह रहे के मुझे याद आता है कि काश मैंने उनको ये सब चीज़ों के लिए थैंक यू बोला होता. काश मैंने उनके लिए उनको ये सब बोला होता, यू नो. अभी भी वो एक दुख है, पर ठीक है, उसमें कुछ वो नहीं है, मतलब इट्स गुड फीलिंग. बट एक होता है वो, तो एक मैंने देखा है कि लोगों को बोलना भी चाहिए. अगर नहीं बोल पा रहे तो कम से कम वी शुड राइट, लिख तो सकते हैं. तो अगर दोनों नहीं कर पा रहे हैं तो देन इट इज अनफॉर्चुनेट. एटलीस्ट गो टू सम थर्ड पर्सन एंड वी शुड एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड. राइटिंग इज अ वेरी गुड उस एक्सरसाइज. जब हम कागज पे उतार देते हैं ना अपने फीलिंग्स को, तो आप चीख चीख के चिल्ला भी सकते हो और किसको सुनाई भी नहीं देगा. राइटिंग इज वेरी पावरफुल. तो जर्नल में लिखना, या आजकल तो सबके पास फोन रहता ही है, फोन में ही लिख दिया. और लोग क्या क्या टेक्स्ट मैसेज करते रहते हैं, सब फालतू का चीज. तो ये अच्छा किसी को कर सकते हैं. अगर अच्छा ठीक है, ये भी नहीं कर सकते ना, तो आप क्या कर सकते हैं, एक डेवोटी को मिलके किसी तीसरे डेवोटी के बारे में बात कर सकते हैं. अच्छा, मतलब उसके बारे में अच्छा. यू कैन टॉक अबाउट सम थर्ड पर्सन. तो उससे भी एक प्रैक्टिस, एक हैबिट. हम लोग क्या करते हैं जनरली, सामने बहुत प्रेस करते हैं, पीछे नहीं बोल पाते. अगर हम पीछे बोल पाएंगे तो फिर यू विल सी, आप वो व्यक्ति को समझ जाएगा कि आप उनसे प्रेम कर, आप बिना बोले वो एनर्जी एक्सपीरियंस होता है. सो बट एज मैंने क्लास में बताया, ग्रैटिट्यूड केवल बोलने के लिए नहीं होता है, वो एक कल्चर होता है, प्रैक्टिस होता है. जैसे मैं जो जनरेशन से मेरे नाना नानी के पास बड़ा हुआ, कभी मैंने उनको देखा नहीं एक दूसरे को थैंक यू बोलते हुए, पर वो एक उनका लाइफ वॉज सेंटर्ड ऑन थैंक यू. जैसे क्षमा मांगने का भी मैंने देखा है, हमारा एक जनरेशन है, मैं आश्रम में रह के मैंने देखा है, कुछ कुछ जो सीनियर रहते हैं ना वो जनरेशन, वो सॉरी नहीं बोलते, उनको वो सॉरी बोलना आता ही नहीं उनको. तो इस्कॉन में मैंने क्या देखा है, हमको सीखना है कैसे लोगों से इनडायरेक्ट अपॉलॉजी भी लेना सीखना चाहिए. कुछ लोग हमको इनडायरेक्टली सॉरी बोलते हैं, मतलब कैसे, मैंने एक बार कुछ मुद्दा उठाया, बोला ये गलत, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वो प्रभु जी ने सॉरी नहीं बोला, पर मैंने देखा अगले दिन उनका व्यवहार में बदलाव आया और उन्होंने उसको सुधार दिया, हालांकि बोला नहीं सॉरी. अगर मैंने जिद किया होता आपको सॉरी बोलना ही चाहिए, तो हमारा रिश्ता और बिगड़ जाता था. तो कुछ कुछ मैच्योरिटी थोड़ा चाहिए समझने के लिए कि ठीक है, वो उनको बुरा लग रहा है, वो शायद सॉरी नहीं बोलेंगे क्योंकि वो कल्चर अलग है, पर अपने व्यवहार से उन्होंने वो दिशा बदल गया उनका, वो करेक्ट किया उन्होंने सिचुएशन को. सो वी हैव टू लर्न, हमें खुद तो बोलना चाहिए सॉरी भी और थैंक यू भी, पर दूसरों से हमेशा अपेक्षा नहीं करना चाहिए. जैसे मैं जानता हूं हमारे कुछ डिवोटी हैं, जैसे मैं मंदिर में रहा हूं, हमारे माइंड में ना एक परिभाषा है प्यार का, हमको लगता है कि कोई ऐसा अगर बोल रहा है तो ही वो प्यार करता है, या कोई ऐसा है तो ही उसके अंदर सेवा भाव है, पर सबका व्यक्तित्व अलग है. जैसे मैं जब आश्रम में आया तो मैंने देखा एक पंजाबी डिवोटी हैं, अरे बड़े एक्सप्रेसिव, दिल से ऐसा हमेशा खुश मिजाज के, और एक साउथ इंडियन डिवोटी एकदम हम्बल सिंपल. तो ये जो पंजाबी डिवोटी थे गुरु पूजा में, उसको साउथ इंडियन डिवोटी को पकड़ के सबके सामने कीर्तन में बीच में लाते थे और जोर से पीठ पे मारते थे, और इसको बहुत शर्म आता था, और वो डिवोटी बड़े खुशी से करता था वो. तो बाद में दोनों के बीच में बहुत टेंशन हो गया रिलेशनशिप में, तो मुझे मीडिएशन के लिए बुलाया. तो मुझे मालूम पड़ा वो साउथ इंडियन डिवोटी, वो ब्राह्मण परिवार का एकदम सिंपल बैकग्राउंड. तो उसने कहा प्रभु जी वो कितना घमंडी है, सबके सामने मेरे को खींचता और मारता है और हंसता है जोर जोर से, कितना अपमानित लगता है मुझे. तो जब मैंने वो पंजाबी डिवोटी को बोला कि आप ऐसा क्यों करते हो, उसने कहा प्रभु जी मैं उससे प्यार करता हूं इसलिए सबके सामने उसको लाता हूं, अगर मुझे प्यार नहीं होता तो मैं उसको इग्नोर करता था. अभी देखिए दोनों का प्यार का परिभाषा ही अलग है. तो ये डिवोटीज के बीच में होता है. मैंने कितनी बार देखा है कि हम सोच के आते हैं ऐसा होना चाहिए, ये डिवोटी अच्छा है. जैसे मुझे याद है हमारे मंदिर में एक डिवोटी ज्वाइन किया था, हमको लगता है नम्रता मतलब क्या, प्रभु जी नम्र रहो, नम्र मतलब हमको लगता है कि शरीर आपका ऐसा होना चाहिए और आंख ऐसा होना चाहिए और आपकी आवाज ऐसे हरे कृष्णा प्रभु, तो यही नम्रता है. तो मुझे याद है एक डिवोटी ज्वाइन किए थे, वो हमेशा ऐसे रहते थे हरे कृष्णा प्रभु, हमेशा ऐसे रहते थे पर एक भी सेवा नहीं करते थे. तो बलदेव प्रभु ने उनको बोला ठीक है प्रभु जी आप एक सेवा करो, बस जाके उधर खड़े होकर चरणामृत दे दो, बस 15 मिनट के लिए बस जाओ. नहीं प्रभु जी नहीं करूंगा, कुछ सेवा नहीं करते थे. तो अभी आपको कैसे समझेंगे इसको. और दूसरे एक डिवोटी जो हमेशा ऐसे रहते हैं, हमेशा ऐसे रहते गुस्से में, पर इतना सेवा भाव और सबके लिए किसी के लिए जान भी दे देंगे. पॉइंट ये है कि हमें बाहरी रूप से ना हम इसको नहीं समझ सकते. तो ग्रैटिट्यूड एक प्रैक्टिस है, ग्रैटिट्यूड एक कल्चर है, ग्रैटिट्यूड केवल बाहरी वो फॉर्मेलिटी नहीं है. ठीक है, एनीथिंग एल्स वी वांट टू एंड. आई सी वन हैंड देयर, एक माता जी का दे दूं, उसके बाद आपका ले लेते हैं लास्ट टू क्वेश्चंस माता जी एंड देन प्रभु. यस
हरे
हाँ माइक आ गया, माइक आ गया, इधर दे दो माइक, इधर इनको दे दो. यस माता जी आई कैन हियर यू.
कृष्णा यू कैन हियर मी. प्रभु जी आई डोंट हैव अ क्वेश्चन, आई जस्ट वांटेड टू से थैंक यू especially for the point which you mentioned about कि कभी कभी हमें कोई पॉइंट समझ आता है क्लास में और सडनली समथिंग दैट स्ट्राइक्स एंड माई रियलाइजेशन सो फार वॉज दैट प्रोबेबली माई माइंड वॉज सेइंग दैट एंड इट यूज टू गिव मी अ डूअर फीलिंग बट टूडे यू क्लैरिफाइड दैट पॉइंट एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल प्रभु जी कि वो आपने उसको ग्रैटिट्यूड के साथ कनेक्ट किया एंड इट वॉज कृष्णाज वॉइस.
गोस्वामी महाराज, भक्ति विज्ञान गोस्वामी महाराज ने बोला था एक क्लास में. थैंक यू.
थैंक यू प्रभु
जी. कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी थैंक यू वेरी मच फॉर सच अ वंडरफुल सेशन एज ऑलवेज. एंड क्वेश्चन इज एज यू सेड इन द समवेयर इन द क्लास दैट देर आर सम गृहस्थास हु कम एंड टेक दर्शन ऑफ डिटेज एंड बिकम इमोशनल, यू नो टीयर्स स्टार्ट्स टू फ्लो देयर. एंड after that somewhere you said that sattva, this mode of goodness does not have that kind of emotional behavior.
Generally.
So does that mean, I mean, we usually try and, you know, try to get to the stage of, you know, getting those tears rolling out of our eyes. But does it mean that we are trying to get into the mode of passion rather than getting into the mode of goodness?
See, yena kena prakarena manah krishna niveshaya. Adrup Goswami ne kaha ki kaise to bhagwan ke sath aap connect ho jao. Agar aap bhagwan ke dekhkar bhagwan ke samne apne jo pain hai express karte hue aapke aankhon se aansu aa gaya to wo to abhi aapko spiritual platform pe leke aa raha hai.
So it's good to cry
in front of krishna. हमारे परम पूज्य गौर गोविंद स्वामी महाराज ने तो भुवनेश्वर टेम्पल के इनॉग्रेशन में बोल दिया था, ओपन द क्राइंग स्कूल हियर. तो डेवोटीज सी दोज एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड, उनका ऐसा एक स्टेज आता है कि वो अभी कुंती महारानी क्या प्रे कर रही है, वो ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने के बाद उनका नेक्स्ट प्रेयर क्या है कृष्ण को. विपदा, अब ये श्लोक आपको पता होगा, आप प्लीज मेरे पीछे दोहराइए, विपदा संतुता शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यस्याद् अपुनर्भव दर्शनम. वो भगवान से और प्रॉब्लम्स मांग रहे. कोई ऐसा है, कोई ऐसा माइका लाल है जो बोल सकता है भगवान मुझे, किसी के लाइफ में कम प्रॉब्लम्स है जो भगवान को बोल सकता है कि भगवान मुझे और प्रॉब्लम्स दो. कुंती देवी ऐसा मांग रही है, दैट मीन्स उनको प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए. ऐसा नहीं कि उनको प्रॉब्लम्स चाहिए लाइफ में, उनको जो एक्सपीरियंस हो रहा है भगवान के साथ वो जो स्वीटनेस, वो उसके लिए शी डजंट माइंड हैविंग प्रॉब्लम्स. दैट इज द पॉइंट. जैसे वो बॉम्बे में वो स्लम एरिया में वो लड़का था, उसके माता पिता नहीं थे, वो अनाथ था, बच्चों के साथ दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलते समय उसके पैर में इतने जोर से लगा कि उसको वो लोग तुरंत हॉस्पिटल ले गए, उसका पूरा नी कैप सब टूट गया था. तो उधर एक माता जी थी नर्स, उसने उसको ऐसा ख्याल रखा, उसको ऐसा उसका इलाज किया और वो ठीक हो गया. फिर बाद में अपने दोस्तों के साथ वापस जब गया, वापस खेलना उसने शुरू किया, तो बार बार वो हॉस्पिटल की तरफ देख रहा था. तो उसके दोस्तों ने कहा क्या हो गया, उसने कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरा एक्सीडेंट वापस हो जाए. तो दोस्तों ने कहा नहीं, उसको तुमको तो इतना लगा था, तुम इतने जोर से चिल्ला रहे थे, इतने पेन में थे और तुम चाहते हो वापस लगे तुमको. तो उसने कहा हाँ, जब मुझे लगा इतना पेन हुआ, पर वो जो माता जी ने मेरा जो ख्याल रखा, मुझे पता नहीं है माँ का प्यार क्या होता है, मुझे कभी माँ का प्यार मिला ही नहीं, मैं तो अनाथ हूँ, पर वो माताजी ने जिस तरह से मेरा इलाज किया, मुझे इतना प्यार मिला कि अभी उसको वो पाने के लिए वापस, अगर मुझे वापस एक्सीडेंट हो जाए, आई डोंट माइंड. यू अंडरस्टैंड? सो इट्स नॉट दैट द चाइल्ड वांट्स दैट पेन, बट जो लव एक्सपीरियंस होता है भगवान के साथ, वो डिवोटीज को इतना उसमें शेल्टर मिलता है कि दे डोंट माइंड गोइंग थ्रू सफरिंग. वी आर नॉट ऑन दैट लेवल, इसीलिए मैंने कहा हम प्रार्थना आर्टिफिशियली तो नहीं कर सकते, बट crying for Krishna is better than being so-called sattva-guna, peaceful, or kuch emotions hi nahi. We want to offer our heart to Krishna. If there is Krishna in the picture, then it is all is everything is auspicious. Hai na? Dekhiye, jiske samne aap has sakte ho, koi achha joke marta hai, hasata hai aapko. Jiske samne aap has sakte ho, uske saath aap pura ek din bita sakte ho. पर जिसके सामने आप रो सकते हो, उसके साथ पूरा जिंदगी बिता सकते हो. तो भगवान के सामने अगर आप, इफ यू कैन क्राई फॉर कृष्णा, देन इट इज ऑल ऑस्पिशियस, होल लाइफ यू आर सेफ. सो दैट इज अवर गोल, दैट इज अवर मूड. ठीक है, तो अंत में अभी क्लास एंड हो रहा है, तो मैं सोच रहा हूं एक हम लोग प्रेयर चैंट करेंगे, सब मेरे पीछे पीछे दोहरा, ये बहुत अच्छा प्रेयर है. ये आज हम ये पांचवें स्कंद से है, 18 चैप्टर टेक्स्ट नंबर 8. ये नरसिम्हदेव के लिए, नरसिम्हदेव को प्रेयर है. हम आज प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे गुरु महाराज का हेल्थ हमेशा अच्छा रहे. हालांकि मैंने वापस का क्लास में कहा था कि हमारी कोई योग्यता नहीं है प्रे करने की, पर इट इज फॉर अवर ओन प्यूरिफिकेशन एंड टू शो अवर डिजायर. तो हम ये प्रेयर ऑफर करते हैं और ये प्रे करते हैं कि हमारे गुरु महाराज का हेल्थ टॉप क्लास रहे, अच्छा रहे और अधिक से अधिक भक्तों को उनका आश्रय मिले. तो प्लीज रिपीट आफ्टर मी. ओम नमो भगवते नरसिंहाय. नमस्तेजस्तेजसे आविराविर्भव वज्रनखा वज्रदंष्ट्रा कर्माशयान् रंध्यरंध्या तमोग्रसग्रस ओम स्वाहा अभयम् अभयम् आत्मनि भूयिष्ठा ओम श्रौं। तो इस प्रार्थना में नरसिंहदेव से प्रार्थना कर रहे हैं भक्त कि आप अपनी तेज से, अपने वज्र नख से, अपने वज्र दंश से आप हमारे जो हृदय में सारे जो अंधकार हैं उसका नाश कीजिए और हमेशा हमारी रक्षा कीजिए। तो हम प्रार्थना करते हैं भगवान से कि हमारे भक्ति की रक्षा हो और हमारे गुरु महाराज का हेल्थ भी अच्छा हो और हम प्रामाणिक रूप से श्रील प्रभुपाद जी के मिशन में, आंदोलन में सिंसियरली सेवा करते रहें। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय। इजोली ने प्रार्थना स्वामी महाराज की जय। श्री श्री राधा वृंदावन बिहारी की जय। गौरांग महाप्रभु की जय। नित्याय गौर प्रेमानंदे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।